ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णजयितं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे गंगावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे।
विश्वरूप प्रभु ने दो घंटे में या ढाई घंटे में संपूर्ण आठवां स्कंद को कहने को कह के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि आप जो भी कहना चाहते हो संपूर्ण कृष्ण भावनामृत को अगर ढाई मिनट में नहीं कह पाओगे यानी तुम सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं जानते। अगर कोई टीवी वाला आता है और कहता है कि स्वामी जी दो मिनट में कहिए आपका कृष्ण भावनामृत क्या है, तो वो कहने भी आना चाहिए। एक बार मैं औरंगाबाद जा रहा था और वहां एक व्यक्ति मिले, मैं गीता पढ़ रहा था तो सामने प्रोफेसर थे वो औरंगाबाद को यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें कहा कि स्वामी जी क्या पढ़ रहे हो, मैं बोला गीता। बोले ये क्या होता है, मैं बोला ये सारों वेदों का सार है। उन्होंने कहा मुझे एक वाक्य में संपूर्ण वेदों का सार बता सकते हैं क्या आप, क्यों? क्योंकि मैं अभी उतरने वाला हूं, मेरा स्टेशन आ गया। कहे मुझे एक वाक्य में संपूर्ण वेदों का सार बता सकते हो क्या? तो मैं सोचा यार 25 साल से मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं समझा अभी तक, और इसको कलयुग में सबको शॉर्टकट चाहिए। पुस्तक आते ना 30 दिनों में सीखो तेलुगु, पहले 5 दिन का क्रिकेट होता था, फिर बाद में एक दिन का ही वन डे इंटरनेशनल, अभी 2020 हो गया, बस काम खत्म। तो कलयुग मतलब ऐसी है, एकदम शॉर्टकट। तो उन्होंने कहा कि बता सकते हो। तो तुरंत मुझे हमारे वरिष्ठ सन्यासी जो भी नहीं है, महाविष्णु स्वामी महाराज गुजरात के थे वो, उनका एक वाक्य मुझे याद आया जो हमारे मंदिर में उन्होंने कहा था। कहे कि संपूर्ण वेदों का सार एक वाक्य में कहा जा सकता है, और वो मुझे याद आया और मैंने कह दिया उसको। मैंने कहा कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनमें लगाओ मति ताकि हृदय में उत्पन्न हो उनके प्रति रति। बस यही वेदों का सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा संपूर्ण वेदों में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों में तीन ही विषय जानने योग्य है, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कय। भगवान संबंध, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सना, एक संबंध ज्ञान। दूसरा अभिधेय ज्ञान, अभिधेय माने उस संबंध को पुनर्स्थापित कैसे की जाए। और तीसरा क्यों उस संबंध को स्थापित करना है, प्रयोजन क्या है। संपूर्ण भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में दे दिया, चार श्लोक में। पहला दो श्लोक संबंध ज्ञान, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, दूसरा श्लोक प्रयोजन ज्ञान, तीसरा श्लोक, और चौथा श्लोक अभिधेय ज्ञान। गीता को भी चार श्लोकों में भगवान ने आठवें अध्याय के 8, 9, 10, 11 चार श्लोकों में दिया। तो इस तरह से संबंध ज्ञान क्या है, कृष्ण हमारे पति हैं और कृष्ण के चरण कमल हमारे गति हैं, भगवान की चरण कमल, भगवान का धाम प्राप्त करना, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए सारे जितने सारे हम लोग विधि और निषेध का पालन करते भक्ति में, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। क्या? स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, 24 घंटे भगवान की मति, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कृष्ण में मति लगाओ। अच्छा, मति लगना बड़ा आसान है जब हृदय में रति होगा, हृदय में प्रेम होगा। जब प्रेम है तो किसी का स्मरण करना आसान है, जब हृदय में प्रेम नहीं है तो तपस्या है, 16 माला भी तपस्या है। बाप रे, आचार्यों ने 16 क्यों किया, 8.5 क्यों नहीं किया? तो जब रति है तो इस तरह से एक वाक्य में भी कहा जा सकता है भागवत को, और जीवन भर भी कहे तो भी कम है भागवत। शिला सनातन गोस्वामी ने भागवत का गुणगान करते हुए एक सुंदर श्लोक कहा है, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सफल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभो कली ध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। संक्षिप्त रूप में संपूर्ण भागवत, क्यों भागवत, कितने सारे असंख्य पुराण हैं, असंख्य श्लोक हैं पुराण में, क्यों भागवत? सर्व शास्त्र अवधि, अवधि यानी अगर सब शास्त्रों को एक समुद्र की तुलना की जाए, अभी आठवें स्कंद में हम समुद्र मंथन की चर्चा करेंगे। जो समुद्र का मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला। सर्वशास्त्र अवधि, अगर सब शास्त्रों को समुद्र में डाल के मंथन करो, उसके बाद जो पीयूष पीयूष यानी अमृत जो निकलेगा वो है भागवत। सर्व वेदैक सब फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये अगर आपने बीज डाला, पेड़ उगा, पेड़ का क्यों डालते हैं हम फल खाने के लिए, तो वो फल जो है सर्व वेदैक सब फल शुद्ध परिपक्व, ऐसा आम जिसमें न गुठली है न छिलका, किसको अच्छा नहीं लगता? ये द्रव, गुठली नहीं छिलका नहीं, ऐसा आमरस आपको कोई मिलता है दे सकता है? ये है, इसमें गुठली और आम नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं है, शुद्ध भक्ति है। फिर सर्व सिद्धांत रत्न अढ्य, अढ्य यानी खान, सर्व सिद्धांतों का, रत्नों का मतलब आपको कोई भी चीज चाहिए इस संसार में, कोई भी सिद्धांत, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सब लॉजी इसके अंदर है। भागवत के अंदर संपूर्ण सब सब चीजों का सिद्धांत है। रामानंद राय से जब पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर से उन्होंने समझाया, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद। ये अंधकार हो गया है, सब अंधे हो गए हैं, किस दिशा में जाना है समझ में नहीं आ रहा है, उस समय में ये सूरज जैसा चमकता है। कली ध्वांत उदित आदित्य, भ्रमित कलियुग के लोगों के लिए एक सूरज सूरज जैसा उग गया है। श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। अब जब श्री कृष्ण धर्म ज्ञान के साथ लीला समाप्त करके चले गए, अब कलयुग के पथ भ्रष्ट जीवों के लिए, अंधकार में जो पड़ गए हैं उनके लिए श्री कृष्ण परिवर्तित, वही श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में भागवत के रूप में आए, विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, नाम के रूप में चैताम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम के रूप में हमारे जिह्वा पर नाचने के लिए तैयार हैं, विग्रह के रूप में हमारी सेवा लेने के लिए आतुर होकर आते हैं वो, ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। तो आज हम आठवां स्कंद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आठवें स्कंद में 24 अध्याय है और उस 24 अध्यायों में तीन अध्यायों में, पहला अध्याय, 13वां और 14वां, इन अध्यायों में मनुओं के बारे में चर्चा की गई है। भागवत में 10 विषय बताया गया है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरः ईशान कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। 10 विषय बताया गया है। सर्ग सृष्टि, सबसे पहले सृष्टि कैसे, जैसे अगर सिविल इंजीनियर को बोले कि आप एक हॉस्पिटल के निर्माण करो, तो वो निर्माण सबसे पहले इधर होता है, उस व्यक्ति के दिमाग में होता है, फिर सामने होता है, फिर पेपर के ऊपर होता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनता है। तो सृष्टि में भी भगवान ने निर्णय लिया कि सृष्टि की रचना होनी है, उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और तत्पश्चात बता दिए कैसा होना चाहिए, कितने घर होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है बता दिए, और तद विसर्ग, विसर्ग मतलब फिर से उसका जो जो स्थूल रूप से निर्माण, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, जैसे हॉस्पिटल बनना है तो वार्ड इधर होंगे, टॉयलेट उधर होंगे, नर्सिंग स्टेशन इधर होगा, ऑपरेशन थिएटर उधर होगा, आउट पेशेंट वार्ड उधर होगा। स्थानम, 84 लाख योनियों को कौन कौन से लोकों में कौन कौन सा स्थान दिया जाएगा। स्थानम, पोषणम, उनका संरक्षण कैसा होगा। उतयः, सृष्टि के लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी। मनवंतर, मनु, अलग अलग मनु इस लोगों को नियम देने के लिए किस तरह से संसार चलाना है। मनवंतर, ईशानु कथा, भगवान के अवतार होंगे, उनके सुंदर लीलाएं। निरोध, किस तरह से कर्म बंधन को रुका जा सकता है। मुक्ति, मुक्ति कैसे मिलती है। और आश्रय, सबसे संपूर्ण आश्रय व्यक्ति कौन है। तो ये जो उनमें से एक विषय है मन्वंतर, तो ये यहां वर्णन किया गया है कि 14 मन्वंतर, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनु जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, अभी ये कलयुग चल रहा है, 4,32,000 साल का कलयुग होता है, जिसमें 5,000 साल हुआ है, अभी 4,27,000 साल बाकी है। थोड़ा चक्कर आ रहा है किसी को, बोले 5,000 में ये गति है और क्या होगा महाराज। केवल 5,000 साल हुए हैं, अभी 4,27,000 कलयुग का बाकी है, फिर कल की आएंगे। उस समय गीता का प्रचार नहीं होगा, उस समय GCL नहीं होगा, उस समय एक बस सिर्फ गला काटने आएंगे बस, कि कोई एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा नालायक, कोई भी यूज, कोई भी, सबके सब, कोई मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। कल की सिर्फ काटने आएंगे सबका सर बस, और फिर से सत्युग का शुरुआत होगा। तो 4,32,000 साल कलयुग, उसका पिछला था द्वापर युग, उसका दुगना, कलयुग इंटू टू, 8,64,000। उससे पहले था त्रेता युग, कलयुग इंटू थ्री, 12,96,000। और उससे पहले था सतयुग, कलयुग इंटू फोर, 4 गुना, यानी 17,00,000, कंप्यूटर निकालना पड़ेगा, 17,28,000 साल, 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000, ये सबको अगर डालेंगे, इसको कहते हैं एक महायुग, चतुर्युग, 43,20,000 साल का एक महायुग होता है, सब त्रेता, द्वापर और कलि। ऐसे 71 बार चतुर्युग होते हैं तो वो एक मन्वंतर है। 71 बार चतुर्युग हुए तो एक मन्वंतर है, और उस मन्वंतर में इलेक्शन होता है। आपको मालूम है, हम तो इंडियन पॉलिटिक्स में ही अटके हुए हैं, यूनिवर्सल पॉलिटिक्स होता है वहां। वहां इंद्र चुने जाते हैं, कौन इंद्र होगा, 71 महायुग के लिए इंद्र कौन बनेगा, और सप्तऋषि कौन होंगे धर्म सब देखने के लिए, मनुओं के पुत्र कौन होंगे, उसके बाद कौन कौन से अवतार होंगे, अलग अलग प्रकार के अवतार हैं भगवान के, ये कौन अवतार होंगे। यहां इलेक्शन नहीं होता, चॉइस ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो हमारा चल रहा है ये 7वां मन्वंतर है, वैवस्वत मनु, विवस्वान का पुत्र, सूर्यदेव का पुत्र, श्राद्ध देव, जो पिछले इसमें सत्यव्रत मुनि थे, वो अभी मनु बने हैं, अभी उनका मन्वंतर चल रहा है। तो इस तरह से 14 मन्वंतर होते, मतलब 43 लाख इंटू 71 इंटू 14, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। भगवान ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटे का होता है, फिर ब्रह्मा जी सोते हैं। वो जब सोते हैं तो हम परमानेंटली सो जाते हैं, वो 12 घंटे के लिए सोते हैं, फिर 12 घंटे के बाद उठते हैं, उसको एक कल्प कहते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुहु रात्रि युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदु जना। तो इस तरह से बहुत सुंदर से, जैसे हमने बोला इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कोई भी आपको जानना है तो भागवत में है। हर एक का साइकोलॉजी कैसा होता है, लोगों की साइकोलॉजी कैसे, स्त्रियों का साइकोलॉजी, बच्चे का साइकोलॉजी कैसा होता है, सब कुछ है भागवत में। तो ये किस तरह से, और हर मनु, हम मनु संहिता हम कहते हैं, वो हमें नियम देते हैं किस तरह से मानव समाज चलनी चाहिए और किस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति देश काल पात्र जब बदलता है उस तत्व को लेकर आज की दुनिया में कैसे उसको लागू किया जाए। ये मनवंतर, ये मनुओं का काम है ये देना। दुर्भाग्यवश हम मनु संहिता को सम्मान नहीं देते, जला देते हम लोग, ना जाएंगे नरक, नरकीय स्थिति हम बना रहे। ये नियम है, ये आप चाहो या नहीं चाहो कुछ नियम है, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। कोई अगर 45 माले से छलांग मारता है और कहता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नहीं मानता हूं, आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको कहने की हक है, कहने का हक है उसे। गिरते वक्त भी कह सकता है आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, नीचे गिरने के बाद, हड्डी टूटने के बाद, मरने से पहले ही बोलता है आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ, कह सकता है, पर द लॉ अप्लाइज नेवर द लेस। तुम कुछ भी कहो, होना तो वही है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मानता है, उसके अनुसार चलता है। बहुत सुंदर से लिखा गया है कैसे जीवन जीना है। मनुष्य, ये शब्द मनुष्य कहां से आया, मनु से आया, मनु का दिया हुआ शास्त्र। तो इस तरह से ये सब प्रकार के मनवंतरों का वर्णन किया गया है और हर एक मनवंतर में भगवान के कई अवतार हुए। हम लोग कितने सुने, दशावतार सुने है ना, दशावतार, भगवान के दशावतार। जब मैं कृष्ण भावना में आने से पहले प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने, मुझे बस अवतार मतलब 10 अवतार, दशावतार कौन सुनते हैं, कभी ड्रामा में देखा है कुछ ही। पर ये अवतार का एक विज्ञान है, संपूर्ण अवतारों का एक विज्ञान है, अलग अलग अवतार जो हुए, ईशानु कथा, अवतार के भी अलग अलग, ये भी एक विज्ञान है, उसमें अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार और मनवंतर अवतार। पुरुषावतार, भगवान इस सृष्टि की रचना करने के लिए पुरुष, पुरुष मतलब भोक्ता और प्रकृति का मतलब भोग्य, हम सब प्रकृति हैं और पुरुष जो है वो 3 पुरुष हुए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि किए, हर कण कण में वो प्रवेश करते हैं और सबको संभालते हैं। तो ये हो गया पुरुषावतार। फिर लीलावतार, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं के, प्रभु राम की लीला, कृष्ण लीला हम देखते हैं, तो लीलावतार। फिर गुणावतार, 3 गुणों को चलाने के लिए, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 गुण को अधिष्ठान देव बनकर वो अवतार लेते हैं सृष्टि को चलाने के लिए, ये गुणावतार। कभी कभी जीव भी भगवान की को शक्ति, भगवान जब शक्ति प्रदान करते हैं वो भी कार्य कर सकते हैं, अद्भुत कार्य कर सकते हैं भगवान की शक्ति को स्वीकार करके, तो गुणावतार। फिर युगा अवतार, हर युग के एक अवतार है। सत्युग में युग धर्म को स्थापित करने के लिए, त्रेता में युग धर्म को स्थापित करने के लिए, द्वापर में युग धर्म को, कलयुग के युग धर्म को स्थापित करने के लिए। और कलयुग के युग अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। कहां वर्णन हुआ है? 12वें स्कंद में वर्णन हुआ है। करभाजन ऋषि को महाराज निमि ने प्रश्न पूछा, चारों युगों के युग अवतार बताइए। और वहां सुंदर बताया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र का आधार होना चाहिए। कोई भी अपने गली में कहेगा मैं अवतार हूं, ऐसा नहीं होता। आजकल दुर्भाग्यवश भारत में भी हर गली में एक एक अवतार नहीं, अवतार के लिए शास्त्र में उनका वर्णन होता है, कब वो कहां प्रकट होंगे, उनकी शिक्षा क्या होगी, वो क्या प्रशिक्षण देंगे, उनके शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं। कोई कहता है कि मैं अवतार हूं तो सबसे पहले बोलिए आपका चरण कमल दिखाइए हमको, और आपके हस्त कमल दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं 24 चिन्ह हैं क्या आपके चरण कमलों में? नहीं है। ही इज नॉट गॉड बट ही इज डॉग सिंपली बार्किंग इन द स्ट्रीट एंड देन डिसअपीयरिंग। गॉड और डॉग में यही अंतर ना, DOG और GOD। कुत्ता भौंकता रहता है, हट किया तो भाग जाता है, उसको लगता है अपने गली में कुत्ता हर एक शेर समझता है, पर एक आदमी आके लकड़ी दिखाया तो भाग जाता है। इस तरह से यमराज हट कहते हैं तो गया जाता, अवतार गया। ऐसे अवतार नहीं, हमको शास्त्र के आधार पर ही अवतार। तो युगावतार, फिर युगावतार हो गया। शक्यावेश, कभी कभी भगवान एक मामूली जीव को भी अद्भुत शक्ति प्रदान करके उनके द्वारा अद्भुत कार्य कराते हैं। जैसे हीरे में ये नहीं है, प्रकाश नहीं है, पर सूर्य का किरण जब गिरता है तो उसमें से प्रकाश आता है। इस तरह से एक एक व्यक्ति को, शुद्ध व्यक्ति को भगवान कृष्ण शक्ति प्रदान करके उसको एक बहुत अद्भुत कार्य उसे कराते हैं, जिसे अर्जुन से कराया उन्होंने। संपूर्ण निमित्त मात्र भव सव्यसाची, उसको एक निमित्त बनाकर रणभूमि में जिता दिया। सृष्टि शक्ति, सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति का प्रचार करने के लिए नारद जी को भक्ति शक्ति देते हैं, अनंत शेष को शक्ति देते हैं, भूधारण शक्ति। संपूर्ण विश्व का पालन करने के लिए, राज्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं उनको भूपालन शक्ति। इस तरह से अलग अलग प्रकार के शक्त्यावेश अवतार, और कभी कभी भगवान खुद आते हैं, और अंत में हुआ मन्वंतर अवतार। तो यहां 8वें स्कंद में 14 मनुओं का वर्णन है, क्योंकि 7वें स्कंद तक स्वयंभू मनु, पहले मनु, उनके पुत्रों का, उनके पौत्रों का, उनसे संबंधित लोगों का, और भगवान कौन कौन से परिवार में अवतार लिए, कौन कौन से क्रियाएं किए, वो सब बताया गया। अभी यहां से स्वरोचिष मनु, फिर उत्तम तामस, अलग अलग 14 मन्वंतर का यहां वर्णन हुआ है। फिर तत्पश्चात दूसरा, तीसरा और चौथा तीन अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन हुआ है, और ये प्रसंग हम सब के लिए बहुत एक एक प्रसंग भी केवल दुर्भाग्यवश लोग कथा में रुचि रखते हैं। कथा जरूरी है, पर कथा के द्वारा तत्व को जानना बहुत जरूरी है, ये तो सिर्फ कथा कथा ही रह जाएगा, मनोरंजन नहीं केवल, पर मन का परिवर्तन होना भी, ये भी जरूरी है, हृदय का परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। तो ये गजेंद्र मोक्ष का, ये चौथे मनु के समय में भगवान अवतारित लिए थे। गजेंद्र नाम का एक हाथी उसका उद्धार करने के लिए। और अगर वो प्रसंग आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आज भी ये तत्व हम सबके लिए लागू है। ये जरूरी है भागवत में सुनना और समझना। क्षीर सागर जो है जहां विष्णु निवास करते हैं वहां एक बहुत बड़ा पर्वत है मंदार पर्वत, और उस पर्वत पर त्रिकूट पर्वत 10,000 योजन लंबा, और उस त्रिकूट पर्वत के एक खाई में एक सुंदर बगीचा है ऋतुमत नाम का। वहां सुंदर सरोवर, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे एकदम फल से लदे हुए, और वहां एक हाथी का झुंड रहता था। और उस हाथियों में जो सबसे नेतृत्व करने वाला सबसे श्रेष्ठ था वो था गजेंद्र। गज यानी हाथी और इंद्र यानी उनका लीडर गजेंद्र। और ये इतना शक्तिशाली था कि सिंह भी जो जंगल का राजा कहलाता है जब गजेंद्र को आते देखते थे तो दूर से प्रणाम करके साइड में चले जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गजेंद्र के सामने आए, इतना शक्तिशाली वो। और इतनी सारी हथिनी, इतने सारे छोटे 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 हाथी के बच्चे, छोटे छोटे हमारे लिए बहुत बड़े होते वो, उनके लिए छोटे होते, तो वो सबको लेके आराम से घूमते रहता था ऐसा। हाँ, जब जाता था तो किसी की हिम्मत सामने आए वो सब दूर से प्रणाम करके जाते थे, ऐसा उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उस सुंदर सरोवर में उसने प्रवेश किया, हर दिन की तरह चलो आज पिकनिक करने जाते, और वो उस सरोवर में प्रवेश किया। प्रवेश करते 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 बस ऐसे ही सूंड से पानी लेता था, छिड़कता था, हथिनियों को बहुत अच्छा लगता था, फिर वो छिड़कती थी, होली खेलते हैं, फिर बच्चों के ऊपर छिड़कता था, ई पापा बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से बस खेल कूद हर रोज जैसे। और जैसे ये चल रहा था एकाएक एक बहुत और इतना हिला रहा था पानी को, पानी जब हिलता है तो उसमें बहुत गंदगी हो जाती है, फिर नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो वहां के जंतुओं को तकलीफ हो रहा था। तो वहां का जो राजा था एक मगरमच्छ, उसने देखा कि ये कौन है, और सीधा उसने आया और गजेंद्र के पैर को एक पैर को पकड़ लिया, और दोनों जब इसे मुंह से दबाकर धीरे 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 पानी में खींचने लगा। गजेंद्र ने सोचा है ऐसे हजार मच्छर जैसे लोग उनको मेहना, तो उसने एक झटका मारा जैसे पहले भी करता था, और एक झटके में सबके सब उड़ जाते थे, पर इस बार वो झटका मारने के लिए झटक नहीं ही नहीं हुआ, उसका पैर हिला भी नहीं, है ये क्या हो रहा है। फिर उसने हिलाया, फिर वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, टग ऑफ वॉर, ये भी खींच रहा है, खींचते 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 ऊपर लाता था, और ये खींच के उसको और अंदर ले जाता था, फिर खींचते लाता था, इस तरह से बहुत समय तक दोनों का खींचाता नहीं चलता रहा। और बहुत समय के बाद, दीर्घ काल के बाद, धीरे धीरे वो हाथी ने देखा है अब मैं हार रहा हूं, मेरी शक्ति कम होते जा रही है और इस मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं भूचर, मैं जमीन पे चलने वाला प्राणी हूं, और मैं फॉरेन प्लेस, और ये उसका राज्य है, ये पानी में ही रहता है, तो पानी के अंदर उसको शक्ति मिलती रहती है, और मेरी शक्ति कम होती जा रही। फिर उसने इधर उधर देखा, अथिनियों को देखा, बच्चों को देखा, सब बेचारे खड़े खड़े सूंड उठा के रो रहे हैं। क्या कर सकते हो, सब लोगों ने प्रयास भी किया हो, उसको हाथी में सूंड लगाकर उसको पैर की इसको पकड़ के वो खींचे, जैसे रस्सी लगा के खींचते ऐसे, इस तरह से किसी ने उसका पैर पकड़ा पीछे का, उसके पैर को किसी और ने पकड़ा, सब पकड़ के खींच रहे, पर मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था धीरे धीरे खींचने लगा। और तब सब लोगों ने अपना सूंड उठा दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। और तब गजेंद्र को समझ में आ गया कि अब मेरा कोई आश्रय नहीं है। धीरे 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 मैं खींचता जा रहा हूं, अंदर अंदर खींचता जा रहा हूं, अब मेरी शक्ति भी कम होती जा रही है। उसका अहंकार बहुत था, उसे सोच कोई सोच भी नहीं आ सकता था कि ऐसी परिस्थिति मेरी हो सकती है, पर अब खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। और तब एकाएक उस निस्सहाय अवस्था में उसे स्मरण हुआ एक सुंदर श्लोक। अब आप कहेंगे इस हाथी को श्लोक कैसे याद आया, पिछले जन्म में वो राजा था दक्षिण राज्य का जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, ये जगन्नाथपुरी वाला नहीं है, दूसरा ही जगन्नाथ कथा में भी आते हैं ना वो इंद्रद्युम्न महाराज, वो नहीं, ये दूसरे राजा। और इन्होंने काफी तपस्या किया था और सही उम्र में सब छोड़कर राज्य वाज्य छोड़कर तपस्या में लग गए थे जंगल में जाके। और एक दिन अगस्त्य ऋषि का वहां आना हुआ, ऋषि ने प्रवेश किया उनके आश्रम में और ये एकदम आंख बंद कर चुपचाप बैठे हुए मग्न है। और अगस्त्य ऋषि आए, शिष्य आए, उनकी परवाह भी नहीं की। तो अगस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आया। देखिए एक व्यवहार का ज्ञान है कि कोई अतिथि आए, अतिथि कोई भी, अतिथि तिथि मतलब बिना बोले आ जाते कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा, तो उस समय और खास करके ऐसे अगस्त्य ऋषि जैसे महान ऋषि आए तो कम से कम कुछ शब्द कह के मुस्कुराना चाहिए कम से कम, और एक कम से कम हो सके तो आसन दो, थोड़ा पानी दो। ये अतिथि सत्कार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम वेदों में दो पहलू देखते हैं, एक जगह बताया गया है अतिथि को कैसा सत्कार करना चाहिए, अतिथि सत्कार नहीं किया तो क्या पाप लगता है, और दुर्भाग्यवश हम केवल उसी को पढ़ते हैं बस। पर दूसरा भाग भी लिखा गया है, अतिथि को भी समझना चाहिए क्या नहीं करना है क्या करना है। अतिथि को हरेक के धर्म है, हरेक गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा, और अतिथि का अपना धर्म है जरूरत से ज्यादा समय रहो मत, बोझा मत बनो दूसरों के लिए। ये लोग जो मनु संहिता को लोग जलाते हैं, दुर्भाग्यवश अगर ये दोनों पहलू पढ़ते, कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण, वहां कहा गया है, समाज को कहा गया है कि ब्राह्मणों को अगर सम्मान नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे। और दूसरे पहलू में यह भी लिखा गया ब्राह्मण है कौन, और वो अगर सही व्यवहार नहीं करता है उससे भी घोर नरक में जाएगा। कहा गया ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो, और दूसरे को कहा गया तू अगर दान ले रहा है उसका एक पैसा भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाता है तो उससे भी घोर नरक में जाएगा। दुर्भाग्यवश हम सिर्फ एक पहलू पढ़ते हैं, या जिनका उद्देश्य उतना नेक नहीं है, जो शास्त्र नहीं जानते, सिर्फ एक पहलू को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो अतिथि के रूप में आया, बोले इतना असभ्य व्यक्ति है, मोटे चमड़े वाला आदमी है जिस पर बैठा हुआ है, तो मैं शाप देता हूं तू हाथी बन जा। और इस तरह से महाराज इंद्रद्युम्न हाथी बन गए थे। पर उन्होंने जो प्रार्थना किया था, श्लोक स्मरण किया था, इस समय उनको याद आया। कभी कभी हम देखते हैं कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से श्लोक को ऐसा समझ लेते हैं, और कुछ लोगों को तो दो श्लोक भी याद नहीं होता। श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सार समझना बहुत जरूरी, पर कैसे होता है ये? पिछले जन्मों का फल है वो। जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भीर एधमान, किस जगह में जन्म लेते हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, शारीरिक सुंदरता है, चार चीज है तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म है पुराने पिछले जन्मों का। अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, धनी हो, जन्म ऐश्वर्य, श्रुत, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी हो, और शारीरिक सुंदरता हो, तो समझ लेना कुछ अच्छे कर्म किए, नहीं तो कर्म ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उसने बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण किया था पिछले जन्म में, अब शरीर छोड़ने से पहले उसको एकाएक पिछले जन्म का श्लोक स्मरण आ गया, और वो श्लोक का उच्चारण करते करते उसने भगवान का सुंदर श्लोक जो उसने उच्चारण किया था पिछले जन्म में उसका वो उच्चारण करने लगा, गजेंद्र। और बगल में ही उस सरोवर में एक कमल था, तो कमल को उसने ऐसा तोड़ा, खींच लिया और भगवान को अर्पण कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेच्छति तदम भक्ति उपार्थम अश्नामि, भगवान स्वीकार करते हैं। तुरंत गरुड़ जी पे सवार होकर वो आए, आकर उन्होंने चक्र के द्वारा उस मगरमच्छ के गले को काट, पहले तो खींच लिया गरुड़ जी को, गरुड़ जी के द्वारा उसको पकड़ के खींच लिए, ऊपर उठाए तो हाथी के साथ साथ मगरमच्छ भी आ गया। अगर कपड़े में क्लिप लगाया, अपने कपड़े को खींचा तो क्लिप भी आ जाता है ना, ऐसे बारिश के दिनों में जल्दी जल्दी में खींच देता, क्लिप भी आ जाता है साथ। इस तरह से खींचे तो उसके साथ मगरमच्छ भी आ गया, तो फिर उस मगरमच्छ के गले काट के फिर उस हाथी गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति वैकुंठ धाम में, सारूप्य क्योंकि भगवान ने के स्पर्श के शरीर छोड़ा हो, तो वो भगवत धाम में उसे सारूप्य मुक्ति मिली चतुर्भुज रूप। और अच्छा, ये कौन था? ये मगरमच्छ, ये भी एक गंधर्व था जिसका नाम था हुहु। आप थोड़ा हंसोगे तो हाहा बोलेंगे, वो उसका दोस्त था वो। और इसका नाम था हुहु। हाँ बोलेंगे ऐसा भी नाम होता है क्या गंधर्वों का? होता है, हाहा हुहु दोनों दोस्त थे। अब हुहु को थोड़ा अहंकार था, स्त्रियों के साथ रमण कर रहा था वो ऐसे ही पानी में, और वहां एक ऋषि बैठकर अपना गायत्री कर रहे थे, तो इसने मस्ती में क्या किया, सब स्त्रियों के सामने, कभी कभी कॉलेज में भी लड़के ना लड़कियों के सामने दिखाने के लिए कुछ ऐसा कुछ कभी नहीं किया हुआ कार्य करना, प्रयास करते कभी कभी उसमें हाथ पैर टूट जाता है, तो उसने थोड़ा इंप्रेस करने के लिए क्या किया, पानी के अंदर से गया और उस पैर, उस व्यक्ति का पैर खींच दिया और वो अंदर चले गए, बेचारे गायत्री करते करते गायब हो गए। तो फिर उठे और देखा कि ये हंसी मजाक में कर रहा है, और तब उसे शाप दिए, बोले तू मगरमच्छ जैसा अंदर से आके पैर खींचता है, तू मगरमच्छ बन जा। और वो भीख मांगा उसने, बोले नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, तो बोला ठीक है, जब भगवान विष्णु तेरा गला काटेंगे तब तेरा उद्धार हो। और इस तरह से दोनों का भी उद्धार हुआ, वो भी अपने गंधर्व स्थिति को प्राप्त किया और गजेंद्र अपने सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। कहानी सबको अच्छा लगा? हम सबकी कहानी है ये। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। गीता इज अ लॉ बुक एंड भागवतम इज अ लॉ जर्नल। गीता सिद्धांत है उसमें बस, लॉ बुक सेक्शन आईपीसी 420, जो ऐसा करेगा उसको ऐसा सजा मिलेगा, लॉ बुक है वो। और भागवत क्या है? 18,000 श्लोक वाला। गीता है 700 श्लोक वाला और भागवत है 18,000 श्लोक। वो कैसे है? लॉ जर्नल। लॉ जर्नल में क्या होता है? एक आर्टिकल आता है, उसमें एक एक्चुअल हिस्टोरिकल इंसिडेंट, मिस्टर वासुदेवन वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट। वासुदेवन ने अपने घर का अतिक्रमण किया मेन रोड में, और गवर्नमेंट आई और जैसा यहां देखा मैंने पेनकर पाड़ा के पास पूरा बुलडोज करा दिया उधर, तो उन्होंने कर दिया। इसका मतलब क्या? अतिक्रमण मत करो। गीता कहता है मत करो, भागवत इतिहास बताता है इन लोगों ने ऐसा किया था, बुलडोजर लगाया गया था, ये देखो पिक्चर, ये उसका फोटो, ये आदमी वासुदेवन, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तो इस तरह से, पर आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसा, बात करने वाला हाथी, साथ मिला हुआ मगरमच्छ, 80,000 योजन का पहाड़, थोड़ा नाना नानी की कहानी लगता है कि नहीं? पर आप समझिए, आप थोड़ा थोड़े मतलब सोचिए कि भागवत इट इज नॉट क्रोनोलॉजिकल। हमारा इतिहास कैसा है? इसके बाद ये राजा आया, उसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था, ऐसा इतिहास नहीं। भागवत इज ए हिस्ट्री दैट इज रेलेवेंट टू अस, हमारे लिए जो है वो दे रहा है। इसमें अलग अलग युगों की बातें हैं। हम 100 साल भी नहीं जीते कलयुग में, पिछले युगों में लोग, सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे, द्वापर में, त्रेता युग में 10,000 साल जीते थे, त्रेता में 1,000 साल और कलयुग में 100, सौभाग्यशाली हो तो। और जैसे जैसे कलयुग जाएगा, अभी मैं देखता हूं उसका हार्ट अटैक हो गया, कितना? 35 साल का था, सॉफ्टवेयर में था, हाँ, प्रेशर था, हाँ, टेंशन था, होता है। ततश्च अनुदिनम धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राशन नंक्षति आयु बलम स्मृति। कलयुग आने से पहले 5,000 साल पहले शास्त्र में लिख दिया गया है कलयुग का वर्णन, ये 8 चीज कम होने वाले हैं। ततश्च अनुदिनम धर्मः, रोज अनुदिनम दिन ब दिन धर्म घटता जाएगा। धार्मिक लोगों अपने आप को धार्मिक कहना कहने के लिए शर्माएंगे, क्या तू धर्म को मानता है? कम ऑन मैन, डोंट बी सेंटिमेंटल, बी साइंटिफिक, कम, यू डोंट बिलीव इन साइंस, गॉड, होता है ऐसा? तो ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम, सत्य घट जाएगा कलयुग में। पहले के क्या, पहले के युग में कैसा था? प्राण जाए पर वचन न जाए, पत्थर के ऊपर लकीर। और राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कलयुग में हमारी वचन कैसे? पानी के ऊपर लकीर। अरे तूने कहा, अब भी तो कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे अब भी तो कहा था तूने, 2 घंटे पहले कहा था। मेरा कहने का मतलब ये था, वो नहीं था। ऐसा पलटी मारते आदमी आजकल लोग। तो सत्यम, सत्य चला गया, और इसीलिए सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर, बॉन्ड पेपर उसके ऊपर सील लगाओ, उसके ऊपर 4 लोगों का गेस्टेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट वो लगाओ, उसके बाद भी बोलते हैं हम नहीं मानते इसको। पर पहले ऐसा नहीं था, मुंह में एक बार आ गया, हो गया। कुंती ने कहा बेटे 5 लोग बांट के खाओ। अरे भिक्षा, ये तो औरत लाया, कुछ भी हो गया, मैंने भी बोल दिया। तो ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम, शुद्धता चली जाएगी, शारीरिक शुद्धता चली जाएगी, मानसिक शुद्धता चली जाएगी, शौचम क्षमा सहनशीलता चली जाएगी, लोग सहन नहीं कर पाएंगे, ये बूढ़ा हो गया इसको घर से हटा दो, ये बच्चा मुझे अच्छा नहीं लगता इसको निकाल दो गर्भ से, सहन नहीं कर पाएंगे। आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, एनीथिंग दैट स्टॉप्स माई एंजॉयमेंट I cannot tolerate any inconvenience. तो ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया, दया चली जाएगी। कालेन बलिना राजन, काल के प्रभाव से हे राजन नंक्षति घट जाएगी, क्या आयु, लोगों की आयु घटी जाएगी, बल घट जाएगा। 40 साल के बाद उठा तो बैठना तकलीफ, बैठ गया तो उठना तकलीफ। नंक्षति आयु बलम स्मृति, लोगों की मेमोरी घट जाएगी। टेलीफोन नंबर क्या आपका 2340, एक मिनट 2340 बनना चाहिए। तो कलयुग की स्थिति है। तो भागवत में अलग अलग युगों की वर्णन हुई है कि 10,000 साल उन्होंने यज्ञ किया। 10,000 साल ए या नाना नानी की कहानी, 80,000 लंबा ऊंट था, इतना 100 योजन हनुमान ने छला, ये ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे नहीं होता। पर तत्व वही है, तत्व ज्ञान वही है, सिद्धांत को निकालो। क्योंकि इस संसार में भी हम देखते हैं हमारी आयु, एक छोटा सा कीड़ा है, बारिश में आता है, वो पैदा होता है 7 बजे और मरता है सुबह 2 बजे। हजारों लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, हजारों कीड़े, सुबह उठ के देखो हजारों गिरे रहते, कुरुक्षेत्र का रणभूमि दिखता। और उस 8 घंटे के अंदर वो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, टीनेजर होता है, उसका टीनेज इश्यूज होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तुतलाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, 12 बजे 1 बजे थरथराने लगते हैं, 2 बजे मरते हैं। उस 8 घंटे में वो लोग 100 साल जीते हैं, कीड़ों का 100 साल होता है, उनके लिए हम ब्रह्मा जी हैं। और एक कीड़ा दूसरे को कहता है, तुझे मालूम है मैंने सुना है ग्रंथों में एक जीव होता है जिसको कहते हैं मनुष्य, और हमारी जीवन की अवधि उनके लिए 8 घंटा है। तो नास्तिक कीड़ा दूसरा कहता है ऐसा थोड़ी होता है, और दोनों बैठे किसी हाथ के ऊपर चर्चा कर रहे, किसी के हाथ के ऊपर। उस मूर्ख कीड़े को नहीं मालूम कि जिस यहां में बैठा हुआ वो किसी के हाथ है। अभी बाहर में कितने सारे मच्छर घूम रहे हैं, उनको मालूम है यहां भागवत सप्ताह हो रहा है क्या? उस मच्छरों को, कुत्ते को मालूम है कि मैं नीरावड़ का कुत्ता हूं? उनको नहीं मालूम। इसी तरह से हम 450 ग्राम वाले जो जीव हैं, उनको नहीं मालूम देवता आके बैठे भी होंगे इधर, चा भी जले भी जाएंगे, हम देख नहीं सकते। हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमारी इंद्रियां बहुत, क्या बोलते हैं, शक्ति बहुत कम है इसकी, इसका लिमिटेशन है। और इस बुद्धि से वो चीज नहीं जान सकते, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, पर है नहीं, नहीं मैं देख नहीं सकता तो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता। इसीलिए चर्म चक्षु से मत देखो, शास्त्र चक्षु से देखो। जैसे साइंस दृष्टि बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इसीलिए तो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहां से बह रहा है, कहां बहता है, कुछ बह नहीं रहा है तो है। अरे बह रहा है तभी तो आवाज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तुम देख नहीं सकते। पर जब तुम साइंस की दृष्टि से देखोगे तो हम समझ रहे हैं यहां से जा रहा है, वहां से पिकअप होके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया, साउंड वाइब्रेशन वहां से कन्वर्ट हो गया। ये विज्ञान है, जो विज्ञान की दृष्टि से देखता है वो समझ पाता है, जो नहीं जानता है नहीं समझता है। इस तरह से कम बुद्धि वाले हम अपने आप को बहुत समझते हैं, हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं, ऐसे बड़े बड़े योगी हैं जो हवा में उड़ते हैं, पानी पे चलते हैं, क्यों नहीं चल सकते? तुम नहीं चल सकते तो इसका मतलब कोई नहीं चल सकता। तो इस तरह से दुर्भाग्यवश एक छोटा सा एक्सरे आपके सामने आंखों में रखे तो आपको क्या लगता है, काला और सफेद वाला परछाई वाला कुछ फिल्म है तो शरीर का कौन सा भाग का एक्सरे वो भी नहीं समझता। पर एक डॉक्टर है वो देखेगा और कहेगा हड्डी टूट गया, अंदर टूट गया, आपको कैसे मालूम? बोले इसको देख के, मेरे को तो सब एक ही जैसा दिखता है, उसने तपस्या किया है 5 साल। इसी तरह से तपस्या से योगिक सिद्धि आती है। जिससे आदमी काम कर सकता है। तो खैर वापस, इसलिए मैं यहां इतना उदाहरण देके कह रहा हूं कि भागवत में अलग अलग लोकों के इतिहास, अलग अलग समय के इतिहास, अलग अलग युगों के इतिहास, अलग अलग ब्रह्मांड के इतिहास यहां लिखा हुआ है, पर तत्व वही है जो वहां लागू था, हमें भी लागू है। और लागू क्या है? जितना आदमी को थोड़ा बहुत शक्ति मिल जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, उसके सामने लोग थोड़ा डर के हिलते हैं तो लगता है समझ में आया मैं कौन। और हर एक के लिए एक ना एक मगरमच्छ आके लेगा ही हमें। मुझे भी बहुत अहंकार हुआ करता था, मैं ऐसा भागता था, ऐसा ट्रेन में सीधा नहीं चढ़ता था मैं, ऊपर का जो है ना क्या बोलते हैं वो, ऐसा चढ़ के ऐसा साइड में जाके बैठता था। बोला अच्छा ये बूढ़ों के लिए चढ़ना सीढ़ी ऊपर से, ऐसा चढ़ के साइड में चला जाता था, ताकत का प्रदर्शन करना। और एक बार ऐसे जाके जो अटका 40 साल की उम्र में, 3 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा, 4 लोग उठा के मुझे ले गए। उसके बाद भाई बहुत अच्छा भाई, छोटे उम्र में हमने बहुत कर लिया, सीढ़ी कहाँ है बताओ, सीढ़ी से चढ़ेंगे। एक बार एक मगरमच्छ ने पीछे पकड़ा, तब सोचने का तरीका बदल गया, तो नम्र हो गया आदमी। तो इस तरह से हरेक को नम्र बनाने के लिए एक परिस्थिति आने वाली है। कुछ भी नहीं तो काल का मगरमच्छ हमें पकड़ेगा, काल का मगरमच्छ हमें पकड़ता है। एक जमाने में मैं ऐसा हुआ करता था, जब मैं बिल्कुल बच्चा था, गोली खाकर जीता था, गोली मार कर जीता था, अभी गोली खा के जीता था। तो काल के रूप में हरेक व्यक्ति पकड़ा जाता है और अंततः बड़ा नम्र होना पड़ता है। नहीं नहीं मैं ही सब कुछ करता हूं, इट्स माई पावर, इट्स माई इंटेलिजेंस, सेल्फ मेड मैन। पर जैसे 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 वो मगरमच्छ खींचता जाता है, पहले तो 40 साल तक अच्छा चलता है, फिर जैसे 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 उम्र होता जाता है तो अंदर अंदर खींचता जाता है, बोले यार ताकत ताकत कम हो रहा है, अभी किसी और की जरूरत पड़ रही है मुझे। और बाद में जब अंदर घुसने वाला बस नाक ऊपर है पानी के, तब स्वाभाविक रूप से दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। क्यों ना अभी से हम समझे उसको, पर वो अहंकार ऐसा है। तो शास्त्र बताता है हम सब की स्थिति ऐसी हो, और सब परिवार के सदस्य खड़े हैं कुछ नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? तुम्हारा लॉयर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा दवाई वाई दे सकता है बस, मृत्यु से बचा सकता है। काल के रूप में जकड़ के हमें खींचा जा रहा है काल। इसीलिए भागवत का एक सुंदर श्लोक है, कहते हैं हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त, यानी मगरमच्छ का एक पकड़ हमें अंदर ले रहा है। उद्यन अस्तंच यन असौ तस्यर्ते यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। कहते हैं हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, शिथिलता की ओर ले जा रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसकी ओर हमें ले जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो समझता है एक न एक दिन मगरमच्छ पकड़ने वाला है, एक न एक दिन हम खींचे जाने वाले हैं, पर जब तक ये शरीर ठीक है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतुमान असराज हंस। आज जब भगवान ने शरीर दिया हुआ है, अभी तक काम कर रहा है, अब क्यों ना हम भगवान का नाम लें। कभी कभी हम लोग कहते हैं जी, पहले जमाने में ना, मुझे अभी भी याद है जब मेरे घर में कोई, मैं हमारे घर में अतिथि आते थे, छोटे हम लोग थे, हम लोग 5 भाई 2 बहन, बड़ा परिवार होता था उस समय, हम 2 हमारे 10 तो 7 लोग थे हम लोग, तो एक लाइन में ऐसे खड़े होते थे डर करके, एक सब ऐसा कोई भी आता था तो सबको लाइन में खड़ा कर देते। खड़ा करने के बाद पिताजी बोलते थे, हाँ चलो चलो इन लोगों को कुछ सुना। तो कोई तो अच्छा ये सहस्त्र नाम या गीता का 10-15 श्लोक। तो मेरी माँ हमेशा सिखाती थी, हम ये सीखो, ये अष्टक सीखो, ये दशक सीखो, और हमें कुछ भी नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं, पर जब बोलते थे तो वो लोग आ करके थपथपा देते, बोला अच्छा लगता है, उसीलिए उसको पक्का करते थे। पर दुर्भाग्यवश अभी ऐसा नहीं है, अभी कुछ और ही आ गया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध की सफेदी, पता नहीं अभी कौन सा आता है, बहुत समय से टीवी नहीं देखा मैं, पूरा याद हो जाता है हमें वो पूरा, जैसा उस वो क्या बोलते हैं म्यूजिक आया तो अपने आप टेप चालू हो जाता है दिमाग में। यानी स्मरण करने की शक्ति है, सिर्फ उसको अगर इन चीजों में लगाया जाए, इन श्लोक के कंठस्थ करने में लगाया जाए। हमें से कितने लोगों ने बॉलीवुड के गाने हमने पक्का किया, उसका सारा स्क्रिप्ट लिखकर, रात को भी सुबह गाना है मुझे, सुनते सुनते सीख गए हम लोग। कभी कभी हम ट्रेन में जाते, पहले पहले ट्रेन में जाते थे तो तुकाराम महाराज के सारे अभंग सुनते थे, अभी अलग ही बॉलीवुड का भी चलता है, करताल सब वही है, डमरू सब वही है, सिर्फ बदल गया है। तो स्मरण करने की शक्ति है, और अगर स्मरण किए हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्पीच, और उसमें क्या होता है, जब भी कुछ ऐसा कुछ समस्या आए तो स्वाभाविक रूप से मन वहां चला जाता है जो हमने कंठस्थ किया है। और इसीलिए कभी जब दिमाग सब काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, क्यों ना ऐसे सुंदर श्लोकों को कंठस्थ करे, और जब जरूरत पड़ेगी तब साक्षात्कार भी होगा उस श्लोकों का, भले हम नहीं भी समझे, उसको रट्टा ही मारे चलेगा। तो हम यहां देखते हैं, उसको जब मगरमच्छ ने पकड़ा तब उसे पिछले जन्म का स्मरण आ गया। तो हमको कुछ साल पहले किए हुए क्यों ना स्मरण आएगा, क्यों नहीं आए, ये बहुत जरूरी है। और ये ऐसा ये संस्कार अगर हम बच्चों को देते हैं, श्लोक सिखाना या कुछ ऐसे भजन, भजन का को भी ऐसी भजन गाती थी, उसमें क्या है, भक्ति है वो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। और निश्चित रूप से काल तो सबको पकड़ने वाला है एक न एक दिन, पर उस समय वो स्मरण आएगा निश्चित रूप से। उस समय भले शरीर वृद्ध हो जाता है पर आत्मा जो है उस नवयौवन है वो हमेशा। इसलिए बूढ़े को भी लगता है कि मैं अभी बहुत भी कर सकता हूं अभी भी, पर शरीर क्या, लोग क्या बोलते हैं, शरीर साथ नहीं देता आज तक, है कि नहीं, शरीर साथ नहीं देता, मतलब स्पिरिट तो वही है, आज भी हिमालय चढ़ने के लिए तैयार हूं, शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि हम अलग हैं शरीर से। तो वो स्मरण शक्ति है, उसका अगर हम आश्रय लें तो निश्चित रूप से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें और दूसरा ये प्रार्थना जो है ये भगवान की कृपा को आकर्षित करता है अपने जीवन में। मैं एक बार इस देर जा रहा था पुणे, तो सामने एक कपल बैठे थे, शायद वो 80 साल के थे और उनकी पत्नी शायद 75 साल की थी। 3 घंटे में उन्होंने एक दूसरे से बातचीत भी नहीं किया, इतना एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। क्या है ना, जैसे जैसे उम्र होते जाता है बातचीत कम हो जाती है, आंखों से बहुत सारी बातें हो जाती है। वो बाहर से वो कुछ तो गया और कुछ तो बोला, और ये उसको देखे करके हंसते बस हो गया। वो बातचीत कहते कहते उन्होंने एक बात कही जो मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, नमस्कार फुकाचे, आशीर्वाद लाखाचे। बोले किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना, बड़ों को, भगवान को, देवी देवताओं को, जहां भी हम जाते हैं, क्या तकलीफ होता है? फूका फूका से मतलब फ्री में मिल रहा है। हाथ जोड़ के झुकना कोई बड़ी बात है क्या? पर अगर हाथ जोड़ के झुके, बड़ों का आशीर्वाद रहा, हमारे शुभ चिंतकों का आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, भक्तों का आशीर्वाद रहा, तो आशीर्वाद लाखाचे, एक लाखों का ही है। गजेंद्र को समझ में आया, क्योंकि अब भगवान की कृपा मुझे चाहिए, वो भगवान का आशीर्वाद ही मेरा आश्रय है, अब मेरा और कोई नहीं है। और उसने क्या किया, बस सूंड को उठाया और एक कमल का फूल लेके ऑफरिंग किया। सरल सी बात है, छोटी सी बात है, पर लाखों का काम हो गया उसका। जन्म मृत्यु का प्रश्न है ये। तो इस तरह से प्रार्थना का महत्व, भगवान की शरण लेने का महत्व, भगवान के आश्रय लेने का महत्व इस कथा से हम सुनते हैं। और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है ध्यान पूर्वक, उसे निश्चित रूप से भगवत धाम की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। एक भक्त ने एक बार पूछा, प्रभु जी सब कथा के अंत में तो ऐसे ही लिखा जाता है, हर चैतन्य लीला के अंत में लिखा हुआ है, जो सुनेगा बहुत जल्दी उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। बोले कितना जल्दी मिलेगा प्रभु जी? तो उसके रशिया में गया था, मॉस्को में हमारे एक भक्त है, उनके गुरुजी से उन्होंने ये प्रश्न पूछा, वेरी सून ही शैल डेवलप लव ऑफ गॉड। तो उसने पूछा हाउ सून महाराज, हाउ सून? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सूनर देन यू डिजर्व बट लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट, सूनर देन यू डिजर्व, तुम्हारी योग्यता से बहुत जल्दी मिलेगा। तुम्हारी योग्यता देखा जाए तो कोई कभी नहीं मिल सकता, योग्यता से पहले ही मिलेगा, पर तुम्हारी अपेक्षा से ज्यादा मिलेगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, सोला माला करने, प्रभु जी अभी आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है, रोमांच क्यों नहीं हो रहा है, बगल घर का कुत्ता दौड़ाता है तो रोमांच होता है, पर जब करते वक्त क्यों नहीं? अरे अभी भी शुरू किया, करोड़ों जन्मों का पाप किया, चार माला करके बोलता है रोमांच हो जाए, वाह, कितने होशियार बनना चाहते हैं हम भगवान के सामने। तो ऐसी बात नहीं है, सूनर देन यू डिजर्व बट लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। तो इस तरह से निश्चित रूप से एक, और वो भी पुरुषोत्तम मास में, पवित्र समय, पवित्र काल, पवित्र स्थान, पवित्र लोगों के बीच में, वैष्णवों के बीच में, श्रद्धालु भक्तों के बीच में, और पवित्र कथा, भगवान का कथा बड़ा पवित्र है, वैष्णवों के संग में बैठे हैं, पवित्र जगह है, पवित्र लोगों के बीच में बैठे हैं, पवित्र समय है पुरुषोत्तम महीना का, और क्या कार्य कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इससे श्रृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अरे जो व्यक्ति हजारों तीर्थ स्थान में जाके, हजारों नदी में डुबकी मार के, हजारों स्वर्ण मुद्राओं को दान देके, दर्शन करके जो नहीं होता, वो पुण्य केवल श्रवण मात्र से मिलता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। क्यों? क्योंकि उस सबका उद्देश्य हृदय की शुद्धिकरण। पर अगर श्रद्धा पूर्वक अगर इस कथा को, जो भगवान के और उनके भक्तों का प्रेममयी आदान प्रदान है, उनको अगर सुनते हैं, निश्चित रूप से भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, निश्चित रूप से हृदय की शुद्धि होती है। तो इस तरह से ये एक कथा, देख मैं समझ ना सुना,
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे वक्ता जो है उनका नाम है इस ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु। बहुत साल पहले एक डॉक्टर रजनीकांत हमारे हॉस्पिटल में हमारे मंदिर में 1990 में आए थे और वो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट यानी कान और जिह्वा स्पेशलिस्ट है। और अपनी जिह्वा से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न स्वामी जी को पूछे और स्वामी जी ने उत्तर दिया सरेंडर नाउ। तो फिर रजनीकांत के राधा गोपीनाथ प्रभु हो गए। वही जो कथा देखिए मुंह से जो बोलते हैं और जो कानों से सुनते हैं श्रवणम कीर्तनम के वो स्पेशलिस्ट बनते। तो वो स्वयं मास्टर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने उसी दिन दूसरे दिन उनकी बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल भी थे एक दिन में सब साफ हो गए और वो ब्रह्मचारी बन गए राधा गोपीनाथ मंदिर में। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के इतिहास में जो प्रमुख प्रमुख ब्रह्मचारी हैं जो आज की तारीख में काउंसिल ऑफ स्पिरिचुअल विजन जो हमारे मंदिर में है उसको मेंबर हैं। मंदिर के जो प्रेसिडेंशियल बोर्ड है उसके भी मेंबर हैं। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि जब हम मीरा रोड में भक्ति वेदांत गणित जो आज उसको पुकारते हैं जो पहले हम उसको चैतन्य पॉलिटेक्निक बोलते थे जो हमने शुरू किया था 1993 में तभी से हमारे प्रभु जी टायर्स फैक्ट्री हॉल में मंगलवार के दिन भगवदगीता का लेक्चर देने के लिए आते। तो मीरा रोड का जो हरे कृष्ण संप्रदाय का प्रचार है उसके बहुत पहले से नींव हमारे प्रिय राधा गोपीनाथ प्रभु जी ने डाली हुई है। और मीरा रोड का जो कॉन्ग्रीगेशन है भक्त समुदाय है उसको बनाने में उसको संवारने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए वो मीरा रोड के बहुत डियर डार्लिंग डिवोटी प्रभु जी सबको बहुत सारे ट्रेन किया है और बहुत जगह भारत भर में प्रवास करते हैं विदेश पे जाते हैं रशिया लंदन और अन्य देशों में और प्रचार करते हैं भक्त बनाते हैं उनको लोगों को। और खास करके मीरा रोड में अभी लेटेस्ट उनका जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने कुछ साल पहले ये मेंटर सिस्टम जो हमारे काउंसलर सिस्टम है उसके आगे जाकर एक और एक सिस्टम बनाया और पूरे मुंबई भर में उसने बहुत ही शास्त्रीय ढंग से बहुत ही योजनाबद्ध रीति से उसको उन्होंने प्रस्तावित किया है और इसका फलन देख रहे हैं। जैसे कि आज की जो हमारे कार्यक्रम की सेवा है फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रसाद नीचे बांटते हैं चप्पल सेवा करते हैं ऑडिटोरियम में हेल्प करते हैं वो सारी सेवा ऐसे ही एक मेंटी ग्रुप ने की है जो सुरेश चारी प्रभु जी और प्रथाचारी प्रभु जी के निर्देश में इनके गाइडेंस में उनका ट्रेनिंग हुआ है उन्हीं लोगों ने आज का ये सेवा दिया हुआ है। ऐसे कई ग्रुप्स उन्होंने मुंबई भर में और मीरा रोड के अंदर विशेष रूप से डेवलप किए हैं और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि हमारे संप्रदाय में शिस्तबद्ध योजनाबद्ध रीति से जो ट्रेनिंग देते हैं उनमें से राधा गोपीनाथ प्रभु जैसे कई लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु जी हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत ऋणी हैं कृतज्ञ हैं क्योंकि आपने मीरा रोड को बहुत विशेष प्रेम और विशेष संग दिया है। सब लोग उनका आज के यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए तीन बार हरी बोल बोल के उनका अभिनंदन। साथ साथ आज का जो प्रसाद है वो मिसेस रूपाली चंद्रकांत ढोकले और मिसेस किंजल प्रमित नाइक इन दोनों की तरफ से है और साथ साथ हमारे नर्सिंग स्कूल यानी कि भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में हमारे तीन टीचर्स हैं। एक है रंजना नाचनकर मैडम एक है योग माया मंडल मैडम और तीसरे हैं हमारे प्रिंसिपल मैडम जो इनका नाम मिसेस शेटकर। इन तीनों ने और इन दोनों माताजी ने मिलकर किया है और विशेष रूप से मिसेस किंजल प्रमित नाइक जो है वो गर्भवती है उन्होंने प्रार्थना की है आप सबके लिए कि वो आप सब लोग कृपा करके उनके लिए प्रार्थना करें। तो हम सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इन पांचों माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
रोज की तरह आपको सोचना है। तो इमरजेंसी दर सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे शांति से। और एक सूचना आज मुझे दी गई है विशेष फीडबैक कि जब आप लोग शाम को आते हो प्रोग्राम में, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपका धन्यवाद है, आपने इतने उत्साह से हमारे कार्यक्रम को प्रतिसाद दिया है, लेकिन हमारे लिफ्टमैन की तरफ से एक फीडबैक है कि मरीजों को लिफ्ट से बाहर निकलने के पहले हम लोग उसमें घुस जाते हैं और थोड़ा मरीजों को असुविधा होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा एक अनोखा अभियान है कि हमारे अस्पताल में ये सब सत्संग कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कहीं होता नहीं अस्पताल में गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, संतों का आना जाना होता नहीं, लेकिन वो जब हो रहा है उसमें कुछ ध्यान रखना जरूरी है कि ये चलता हुआ फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है और मरीजों के लिए प्राथमिक रूप से बनाया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मरीजों को किसी प्रकार से असुविधा न हो और हम पूरी तरह से हमारे कार्यक्रम का लाभ भी ले लें। एक आपके लिए सूचना है, आप उसको ध्यान रखिए। और अभी एक मिनट का समय है तो जितना आगे हो सके उतना आगे आ सकते हैं, कुछ लोग खड़े उनको बैठने को जगह नहीं, कृपा करके एक सेकंड के अंदर आप आगे आएंगे तो 10-15-20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। और हम लोग बार बार आपको विनती कर रहे हैं लेकिन फिर भी तरह तरह की म्यूजिक बीच में बजते रहे, जो है हमारा आज का कलीम का फ्रेंड मोबाइल, तो सब लोग उसको भी बंद कीजिए, तो कथा में व्यवधान आए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी व्यवधान आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका और प्रभु जी आप कृपा करके आगे प्रवचन जारी रखिए, बहुत धन्यवाद।
हम भी मरीज है, स्वस्थ मरीज है। तीन अध्याय में एक घंटा हो गया, अभी थोड़ा भगाना पड़ेगा गाड़ी को। ये तीन अध्याय थे, 2, 3 और 4। अध्याय 5 से अध्याय 12 यानी 8 अध्याय जो हैं अगले दशम अपने आठवें स्कंद के 5 से 12 अध्याय है, ये छठे मन्वंतर के दौरान भगवान का एक अवतार हुआ अजित रूप में। ऐसे असंख्य अवतार हैं, जैसे समुद्र की लहरें कोई गिन नहीं सकता, इस तरह से भगवान के असंख्य अवतार कोई गिन नहीं सकता। असंख्य अवतार होते हैं, करोड़ों अवतार। तो हर एक अवतार की अगर लीला का वर्णन की जाए तो फिर हम एक ग्रंथ में नहीं लिख पाएंगे, पर इसका कथा इस बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है हमारे हम सबके लिए। जैसे मैंने कहा, हम सबके लिए इसमें क्या लागू है, अल्टीमेटली व्हाट्स इन इट फॉर मी, क्यों मुझे सुनना है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे हृदय में ये कुछ परम सत्य तत्व है, उस तत्व सिद्धांत को लेकर अपने जीवन में भी उसको लागू करना है। एक बार दुर्वास मुनि वैकुंठ से आए और माला लेके आए थे, भगवान का हार, और आते वो उन्होंने देखा कि इंद्र रथ ऐरावत पे बैठा हुआ है और आ रहे हैं उनकी ओर, तो उन्होंने भगवान का हार जो महाप्रसाद लाए थे उन्होंने इंद्र को दिया। पर इंद्र को हर रोज सब देवता लोग भर भर के हार डालते, कोई हमारे पॉलिटिशियन रहता है जहां भी जाए तो 10-10, 15-15 हार डालते रहते, तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अति परिचय अवज्ञा हो जाता है। तो इंद्र को लगा कि ऐसे इतना सब हार है, तो उसने क्या किया, उसको अपने हाथी के सूंड के ऊपर डाल दिया, और वो हाथी उसका क्या दिमाग है, जो भी मुंह में आता वो पैर के नीचे डाल के कुचल दिया उसने। जब दुर्वास मुनि ये देखे तो हंस के चले गए वहां से, मतलब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर एंड, अभी तुम्हारे अंत का शुरुआत हो गया है। अहंकार जो है आदमी का, वो हमारे अंत का शुरुआत है। अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांति मार्जम आध्यात्मिक प्रगति होती है नम्रता के द्वारा। तो चले गए और धीरे 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 उनका अप्रसन्नता से यस्य अप्रसादात्मगति कुतोपि, धीरे धीरे इंद्र का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। यहां तक कि बलि महाराज आक्रमण किए और इंद्र को भागना पड़ा, वहां से अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। लिटरली रास्ते पे आ गए वो, कहां इंद्र, और छिप कर रास्ते पे आके जीना पड़ा उन व्यक्ति को। कोई भी देवता, सब देवता, उनके पदवी नहीं है, उनका घर नहीं है, जैसा अभी नेपाल में हुआ ना, सब के सब रास्ते पे आ गए। ऐसी परिस्थिति हो गई इंद्र की, सब छिप छिप के वहां से भाग गए। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तब दिमाग ठिकाना आता है। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी गलती है, गलती तुम्हारी है, तुमने अपराध किया, अहंकार में आकर तुमने अपराध किया। तो आशीर्वाद की शक्ति चली गई। पुनर्मूषिक भव, एक कहानी है, प्रभुपाद जी कहते थे एक चूहा एक साधु के पास गया और बोला चू 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 करके गया और बोला मुझे क्या हो गया, बोले मुझे आशीर्वाद दो। बोले क्या, मुझे बिल्ली दौड़ाता है हमेशा, बिल्ली से मैं तंग आ गया। बोले क्या करूं, मुझे बिल्ली बना दो। बिल्ली भव, अच्छा हो गया, अच्छा मोटा बिल्ली बन गया। फिर घूमते घूमते आया, फिर भागते आया थोड़ी कुछ दिनों के बाद, म्याओ म्याओ। बोले क्या हो गया, अभी कुत्ते लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। बोले क्या चाहिए तुम्हें, कुत्ते बना दो, कुत्ता भव। चलो फिर भागते 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 आया थोड़े दिन के बाद, बोला अभी क्या हो गया, अभी आदमी लाठी से भगा रहा है मुझे, तो तुझे क्या बनना है, आदमी बनना है, चलो आदमी भव। फिर थोड़े दिन के बाद भागते आया, बोला अब क्या हो गया, अभी शेर मेरे पीछे भाग रहा है, जब भी मैं जंगल में जाता हूं तो मैं क्या करूं, मुझे शेर बना दो। शेर भव, और जैसा शेर बन गया उस साधु की ओर देखने लगा घूर घूर के। बोला ओ बेटा मेरी बिल्ली मुझ पे म्याओ। बड़ी बिल्ली वो भी, ने कहा पुनर्मूषिक भव, चू करके फिर से ऐसे ही वापस। तो इस तरह से जब कृपा से, भगवान की कृपा से, वरिष्ठों की कृपा से कुछ शक्ति मिलती है आदमी को, तो सर पे चढ़ जाता है कभी कभी, और उसको लगने लगता है कि अभी किसी की मेरी जरूरत, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। और उसके कारण नम्रता, मतलब क्या, देखो पानी ऊपर से नीचे बहता है, इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कोई भी चीज ऊपर से नीचे बहता है। तो आदमी अपने आप को जितना निम्न समझता है उतना कृपा बहती है, और जितना अपने आप को ऊपर समझता है तो कृपा चली जाती है फिसल के। सब सरल सी बात है, लॉजिकल है ये। तो फिर सब कुछ खो गया वो, तो सब सारा ऐश्वर्य उसका चला गया। और वो ब्रह्मा जी बोले एक काम करते हैं, अभी अभी भगवान के पास जाते। तो सब भगवान के पास गए, पुरुष सूक्त प्रार्थना की, तत्पश्चात भगवान ने प्रकट हुए ब्रह्मा जी के बुलाने पर। थोड़ा अच्छा रिकमेंडेशन हो तो फिर हो सकता है ना काम, सही व्यक्ति रिकमेंड करना चाहिए। तो भगवान आए और उन्होंने कहा कि देखो अभी एक काम करो तुम लोग, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ब्राह्मणों की सेवा की है, अपने गुरु की सेवा की है उन्होंने, शुक्राचार्य जी की, इसीलिए वो प्रगति कर रहे हैं। अभी तुम लोग एक काम करो, उनके साथ एक ट्रूस, क्या बोलते हैं, संधि, उनके साथ संधि करो और बोलो। और संधि कैसा करेंगे, वो लोग तो जीत रहे हैं, हम लोग तो हार रहे हैं। एक भिखारी जाके करोड़पति के पास बोलते हैं चलो संधि करेंगे, पार्टनरशिप। बोले क्या पार्टनरशिप, तेरे है क्या, तेरे पास कुछ नहीं है इसीलिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो वो बोले क्या संधि करेंगे, बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो उनको बोलो तुम्हारा अमृत पाहिजे का, अमृत, अमृत तो चाहिए। बोले एक काम करते दोनों मिलके करना पड़ेगा काम, समुद्र मंथन करेंगे तब उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत को किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और अकेले असुर लोग नहीं कर सकते, ये काम ही ऐसा है कि सब लोग मिलके ही करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, उनको बोला हम लोग दोनों मिलके करेंगे और जब आएगा तो 50-50 ठीक है। और बोले वो तो बहुत शक्तिशाली है, अमृत आने के बाद छीन लेंगे, तू मैं जितना बोला उतना करो बस, सारा औषधि को इधर से लो और समुद्र में डालो, मंदार पर्वत को लाओ और उसे मंथन पर, समुद्र को मंथन करना ये कोई ऐसा थोड़ी है यशोदा माई ने सिर्फ एक उखल में लेके बांध जाने, ये तो पूरा समुद्र को मंथन करना है। तो मंदार पर्वत को ले आओ और वसुकी सांप को एक ये बनाओ, क्या बोलते हैं उसका, रस्सी, और फिर उसको मंथन करो। और भगवान बोलते हैं, अच्छा उससे पहले भगवान क्या, भगवान कह रहे, सुनिए ध्यान से, भगवान कहते हैं देखो इस समय में तुम जब हार रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस समय तुमको अहि मूषिक न्याय उपयोग करना पड़ेगा। अहि यानी सांप, मूषिक यानी चूहा। बोले सांप और चूहे का न्याय तुम्हें लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है? बोले एक बार एक टोकरी में एक सांप और एक चूहा फंस गया, दोनों फंस गए। तो सांप ने बोला आह चूहा तो मेरा एक लंच हो गया, एक टाइम का खा सकता हूं, पर खा लूंगा फिर मरना ही पड़ेगा, मैं किसी और का लंच बनूंगा क्योंकि टोकरी बंद है। तो सांप ने क्या किया, चूहे के साथ संधि किया, एक काम करते हैं तू, मैं तुझे खा सकता हूं, मैं नहीं खाऊंगा पर एक शर्त पर, तुझे एक छोटा सा छेद बनाना पड़ेगा यहां से टोकरी में से, और तू कैसा टोकरी में से छेद करेगा, हम दोनों निकल जाएंगे। और जैसे चूहे ने छेद किया, चूहे को भी खा लिया और टोकरी से बाहर निकल गया। भगवान सिखा रहे हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी भगवान भी ऐसा काम कराते हैं क्या, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती महाराज। तीन प्रकार के न्याय बताए गए हैं, तीन प्रकार के न्याय। एक न्याय है बृहस्पति न्याय, दूसरा न्याय है कणिक न्याय, और तीसरा है शुक्र न्याय। तो तीन प्रकार की नीति है। बृहस्पति नीति क्या, अच्छा लक्ष्य और अच्छा मींस एंड एंड, मींस को क्या बोलते हैं, माध्यम। हमारा लक्ष्य भी बड़ा नेक और उस लक्ष्य को प्राप्त, हां साध्य नेक, और उस साध्य को प्राप्त करने का साधन भी नेक, उसको कहते बृहस्पति न्याय, जो युधिष्ठिर महाराज ने पालन किया। वो लोग कुछ भी करे, हमारा ध्येय और साध्य भी क्या बोलते हैं नेक है, और हमारा साधन भी नेक। और कणिक न्याय मतलब क्या, कोई भी साध्य प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपना लो, कोई भी साध्य। तुमको पैसा कमाना है ना, कैसे भी तू कमा बस, और कुछ भी कर तू चलेगा, किसी को तोड़ दे फोड़ दे, जान मार दे, छोड़ कर डाका डाल, कुछ भी कर, खूब कमा और मौज कर। तो साध्य भी गलत और साधन भी गलत। दुर्योधन को कणिक ने यह सिखाया है न्याय, बड़े दोस्ती करने का, और बाद में उनको बोलने का तुम लोगों के लिए पिकनिक के लिए मैंने वारणाव्रत में एक फर्स्ट क्लास मकान बनाया, चाहो तुम लोग रहो, खास तुम लोगों के प्रेम दिखा, बहुत समय से प्रेम उमड़ आ रहा था इसीलिए हमने बनाया, और उसमें लाक्षाग्रह बना के अंदर जब जाएंगे जला डाल, जो हक तुम्हारा नहीं है राज्य का वो तुम्हें प्राप्त करना है, और इसलिए उनको मार डालो। ये कणिक न्याय है, ये धूर्त न्याय है, गलत साध्य और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए गलत साधन, कोई भी साध्य और उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन, ये बृहस्पति और ये कणिक नीति। अब बीच में है शुक्र नीति। शुक्र नीति कहता क्या है, साध्य हमारा नेक है पर सामने वाला बहुत टेढ़ा है, तो उसको टेढ़े तरीके से उसको सीधा करना पड़ेगा। और यही न्याय भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया दुर्योधन के विरुद्ध, कर्ण के विरुद्ध, द्रोणाचार्य के विरुद्ध, जो खुद मार सकते अभिमन्यु को। पर तुम लोग ऐसा नहीं करने का, तुम लोग ऐसा नहीं कर, तुम लोग धार्मिक लोग, हम आम कुछ भी कर सकते हैं। वाह, बोले नहीं, अभी कर्ण तुझे धर्म याद आ रहा है, अभी तुझे धर्म याद आ रहा है। उस समय जब अभिमन्यु को मारा उस समय क्या था, अर्जुन मार अभी इसे, अभी दुर्योधन को धर्म याद आ रहा है। उस समय जब नहीं आया जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, कैसी कैसी हुई वो। तो ये शुक्र न्याय है, शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और उन्होंने वो न्याय बताया। और ये न्याय आया कहां से, ये भगवान ही बोल रहे हैं। अभी तुम दुर्बल हो, उनके साथ दोस्ती करो और फिर अमृत निकालो आधा आधा, नए नए वो लोग छीन लेंगे, देखा जाएगा। तो गए असुर लोग, बोले हाँ हमको भी चाहिए, चलो ठीक है। और अंदर ही अंदर असुर लोग सोच रहे थे, बेटे तुम लोग निकालो तो सही, बाद में देखते हैं, हम लोग एक कान के नीचे बजाएंगे, पूरा अमृत लेके जाएंगे। है सचमुच में वो लोग बहुत शक्तिशाली है, उनके पास अमृत भी मिल गया तो क्या चुप रहेंगे वो लोग। मालूम था, देवताओं को मालूम था, इतना परिश्रम कर रहे हैं हम लोग और अमृत निकलेगा तो वो लोग निश्चित रूप से लेंगे, हमारे पास ताकत नहीं है लेने के लिए। पर फिर भी प्रभु ने बोला है, चलो मंथन करते हैं। तो गए, मंदार पर्वत को उठाए, अरे बोलो अहिसा, सब उठाते हैं ना अहिसा, बड़ा बड़ा टेलीफोन खंभा नहीं उठता है तो कैसे, तो दोनों उठा के लाए और फिसल के गिर गया। 80,000 मील लंबा सोने का पर्वत, हाथ पे गिरा, पैर पे गिरा तो बचेगा क्या, हमारे गिरिराज प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते, ऑर्थोपेडिक वाले भी कुछ नहीं कर सकते। अभी हड्डी बचेगा तब ना जोड़ेंगे उसको। कुछ लोग तो अंदर ही चले गए, सर्वस्व अंदर पूरा, किसी का हाथ किसी का पैर, आधे लोग तो मर ही गए। इतना बड़ा पर्वत दोनों असुर और सुर दोनों उठा रहे और दोनों नहीं उठा पाए और चिल्लाने लगे, प्रभु कुछ तो करो, आपके कहने पर आए, देखो हालत क्या हो गया। तो भगवान आए गरुड़ जी के ऊपर और बोले ठीक है ठीक है, काम करो, सब लोग बाएं हाथ से ऐसा उठा दिया भगवान पर्वत को, जो असुर और दानव असुर और सुर दोनों नहीं उठा पाए थे, बाएं हाथ से ऐसे 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 पकड़ के उठाते ना, एक मिनट साफ करो उसको, हाँ इसको ऐसा उठा लिया हाथ में। और असुर लोग ऐसे ऐसे हाथ पैर करके उनके ऊपर सिर्फ अपना दृष्टि डाले तो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मिक्की माउस पिक्चर में होता है, अंदर घुस जाते फ्लैट और उसमें से फुस करके वापस आ जाता, ऐसे आ गए वो लोग ठीक ठाक, सब ठीक हो गए। ठीक होने के बाद बोले चलो अभी एक गरुड़ जी के एक पंख के ऊपर एक पर्वत को रख दिया, दूसरे पंख में सारे असुर और देवताओं को बैठा दिया और गरुड़ जी आराम से उड़ते जा रहे। गरुड़ जी की शक्ति देखो आप, और वो शक्ति कहां से आई, कृष्ण की कृपा से। कृष्ण चाहे तो जीरो को हीरो बना देंगे और वहां से मेन स्विच ऑफ कर दिया तो हीरो जीरो, कितना भी कितना शून्य हो एक निकाल दो बस हो गया खत्म, हो गया पूरा जीरो। और जितना भी जीरो हो उसमें एक लगा दिया तो एक करोड़ हो जाता है, तो वो एक अगर चला गया खत्म। तो गरुड़ जी आराम से उठाए सबको, जाके समुद्र में ड्रॉप कर दिए, चलो काम शुरू करो। तो वसुकी को बुलाए, गरुड़ जी को बोले आप निकलो, आप रहेंगे तो वसुकी आएगा ही नहीं, सांप देख के आता ही वो आते ही नहीं गरुड़ जी को देख। तो गरुड़ जी गए, वसुकी आया उसको घुमाए और चलो खींचेंगे। और जैसे खींचना शुरू किए असुरों ने देखा हमारे पास पूंछ और तुम्हारे पास मुंह, इज्जत का सवाल है, मुंह इधर पूंछ उधर, इतना प्रेस्टीज इश्यू होता है क्या, तुम्हारा कुर्सी 6 इंच ऊंचा और मेरा 6 इंच नीचे, वो करता है और थोड़ा घुमाता है वो ऐसा। इस तरह से प्रेस्टीज इश्यू रहता है, तो उन्होंने क्यों कहा नहीं, पूछ पिछला भाग है और मुंह सामने वाला, मुझे सामने वाला चाहिए। तो ठीक है भाई आ जाओ। तो सारे असुर मुंह को पकड़े और देवता बोले ठीक, क्योंकि भगवान ने बोला था जो भी वो बोले हाँ बोलना, झगड़ा नहीं करना, प्रेम से करना काम और सहनशील, भ्रमित मत होना, बहुत सारी चीज निकलेंगे, अच्छे अच्छे चीज निकलेंगे, आकर्षित मत होना, तुमको अमृत चाहिए, बस अमृत के ऊपर ही ध्यान रखना। तो देवता ने बोला मुंह चाहिए, ठीक है भाई मुंह ही ले लो, हम पूछ लेंगे। ठीक है फिर शुरू किया। अब जब वासुकी का थोड़ा मंथन हो गया ना, उसका भी पेट में बेचारा घुमा घुमा रहे हैं ऐसा, पर्वत भी अंदर घुसा के उसका, तो उसके अंदर का सारा जहर फुस करके निकला, ऐसा काला धुआं निकला, असुर का मुंह काला, सब लोग एक दूसरे को देख रहे, तेरे को बोला था मुंह मुंह करके आया, हो गया ना तेरा मुंह काला, पर अभी इज्जत का सवाल है, बोले कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, हाँ चलो चलो खींचेंगे चलो, दिखाना नहीं चाहते ना, इज्जत का सवाल हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसा हो गया बस, थोड़ा शुरू। अच्छा जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला हालाहल, ऐसा खतरनाक विष जिसका एक बूंद उसका अगर गंध भी अगर नाक में चला जाए तो व्यक्ति तुरंत मर जाए, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड विष निकला निकला निकला, बाप रे सब मरने लगे वो लोग, फिर सब भागते गए, अरे प्रभु अभी क्या करें। बोले एक काम करो, शिवजी को बुलाओ, केवल शिवजी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की तकलीफ को देख नहीं सकते, वो सब कुछ पी जाएंगे खुद, और उनके अंदर वो ताकत है जैसे गंगा जी को धारण किए, नहीं तो भेद के चली जाती पृथ्वी को। बोले शिवजी ऐसे महान वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, बोले शिवजी एक ऐसे वैष्णव है सारे जहर को पी के ठीक ठाक रह सकते हैं। तो शिवजी ने पार्वती की ओर देखा, मैडम परमिशन है क्या, आप बोलो क्योंकि मैं तो पी जाऊंगा, आपको संभालना पड़ेगा बाद में। पार्वती जी को पूरा विश्वास था, बोले कोई चिंता मत करो ले लो। ठीक है शिवजी इतने वैष्णव पर दुख दुखी वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर आए जाने, उन्होंने कहा कि ठीक है विष को उन्होंने और भी कॉन्सेंट्रेट किया, रसना कॉन्सेंट्रेट होता है ना, ऐसा पूरा एक हथेली में लिया पी लिया। पीने के बाद उन्होंने यहां गले में उसको बैठा दिया, और इसीलिए तब से शिवजी का नाम है नीलकंठ या कालकंठ, काला हो गया ऐसा, और वो एक आभूषण है शिवजी के लिए। हमारा गला अगर काला हो जाए ला तो हम लोग उसको मफलर वफलर लगा के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा कॉस्मेटिक ब्यूटी नहीं है, पर वो बोले वाह ऐसे घूमते हो कालकंठ या नीलकंठ, नीलकंठ नाम है लोग नीलकंठ रखते ना नाम, तो ये उनकी कृपा की महिमा, क्योंकि वैष्णव किसी की तकलीफ उनका तकलीफ उनका खुद का तकलीफ, जैसे माँ एक छोटे बच्चा तड़प रहा है, उनका बच्चा अगर बुखार है तड़प रहा है रो रहा है, माँ को बहुत दुख लगता है, उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख, जैसे शिवजी जो है पूरे ब्रह्मांड का दुख उनका दुख, और उसके लिए वो कुछ भी सहन करने के लिए तैयार। तो ये हो गया, तत्पश्चात फिर से शुरू हुआ मंथन, चल रहा है चल रहा है। सबसे पहले एक सुंदर गाय कामधेनु आई, तो ऋषियों ने कहा हमको चाहिए थोड़ा यज्ञ के लिए घी लगता है, बोला ठीक है तुम लोगों के लिए। फिर से शुरू, सुंदर घोड़ा आया उच्चैश्रव नाम का, बलि महाराज ने कहा हे माला भाई जी ठीक है। फिर ऐरावत हाथी आया, इंद्र ने बोला आता तुम्हारा जाला ना तो माजा नंबर है, उन्होंने ले लिया। इस तरह से काफी मंथन हुआ, बहुत सारे आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूल्यवान चीजें आने लगी। कौस्तुभ मणि आया, लक्ष्मी जी साक्षात आई और सब लोग देख रहे हैं। हार में हार था उनके हाथ में, बोले सब थोड़ा अच्छे तरह से खड़े हो रहे हैं कि लक्ष्मी जी आ जाए तो लक्ष्मी मैया वर दे, करोड़पति कर दे। तो देख रहे और लक्ष्मी जी देखने लगी, सबकी ओर देखने लगी। बहुत सुंदर से वर्णन, लक्ष्मी जी भाई देखे, ये देखने में सुंदर है पर हृदय इसका शुद्ध नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है पर सुंदर नहीं है, ये बड़ा धनवान है पर वैराग्य नहीं है, ये वैरागी है इसके पास धन नहीं है, ये है उसके पास ये नहीं। कोई भी किसी में भी पूर्ण रूप से सदा सारे गुणों से संपन्न नहीं थे। फिर उन्होंने देखा विष्णु खड़े थे वहां, बोले यही एक व्यक्ति है जिसके अंदर सब सारे सद्गुणों से संपन्न गुणों का सागर। अच्छा अच्छा चलो चलो समुद्र मंथन हो गया, हो तो गया काम से, नेक्स्ट फिर से शुरू। इस तरह से करते 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 बहुत सारे चीज निकलते हैं संक्षिप्त रूप में, समय कम है सबका वर्णन नहीं करेंगे। अंत में धन्वंतरी जी आते हैं। आप आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां धन्वंतरी जी का फोटो है और एक कलश लेके आए, सुंदर स्वर्ण कलश और उसमें भर के अमृत। और जैसे धन्वंतरी आए, सांप को छोड़ा, भाग के गए, उठा लिए धन्वंतरी जी के हाथ से, भाग रहे सब, सब भाग गए। और देवता लोग पूंछ के पूंछ हिलाते ही रह गए, पूंछ को छोड़ा तुला सांगितला होता भी सच झाला, वही हो गया, गया काम से। और इतने शक्तिशाली, पहले से ही शक्तिशाली, उसके ऊपर अमृत भी मिल गया। तो वो लोग बोले भी क्या करें, बोले भगवान क्या बोले थे, चुपचाप बैठने का, देखते रहने का, क्या कर सकते, वैसे भी कुछ काम होने वाला नहीं, देखते रहो। तो अमृत मिल गया तो फिर बोला, फिर आपस में उनका शुरू हो गया, पहले कौन पिएगा, पहले मैं फिर शुरू हो गया। कभी कभी दो पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है झगड़ा करने के और जीत जाते हैं, जीतने के बाद फिर से चालू होता है, सीट किसको होगी, हमको कोटा इतना चाहिए, हमारा कोटा इतना, सीट है पर बैठने के लिए कोई नहीं होगी। एक बार हमारा भी ऐसा झगड़ा हो गया लोकल ट्रेन में, ग्रैंड रोड में मैं चढ़ा तो वहां एक आदमी बैठा हुआ, एक आदमी बेचारा पर्स उठाने के लिए उठाए बैठा तो किसी की गोद में बैठा, तो बोला नहीं नहीं अभी मैं उठा नहीं हूं, बोला मैं भी बैठ गया हूं, बोला ये मेरा सीट है, उसने सीट पकड़ के उसको उठा दिया। और दोनों लड़ रहे हैं उस सीट के लिए, तीसरे की हिम्मत नहीं बैठने के लिए, खाली सीट, चार स्टेशन तक माटुंगा रोड तक झगड़ते रहे। मैं सोच रहा हूँ बैठ जाता तो तब तक कम से कम तब तक मैं जाके बैठ जाता, जब तक तुम्हारा डिसीजन नहीं हो जाए, कोई किसी को बैठने की हिम्मत नहीं। अब माटुंगा में एक को उतरना था तो उसने उसका कॉलर पकड़ के उसको भी उतार दिया, गाड़ी चला गया, वो लोग झगड़ रहे हैं उस सीट के लिए जो चला गया, भूल गए किसने झगड़ रहे थे, शुरू कैसे हुआ झगड़ा। आप इतने हंस रहे हैं मतलब आपको ये दैनिक अनुभव है। मैं समझता हूं पूरा आत्म साक्षात्कार मुंबई के लोकल में हो सकता है, अगर दृष्टिकोण से आप देखोगे सेल्फ रियलाइजेशन इन द मुंबई लोकल्स, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत सारे चीज सीखने को मिलते हैं। तो अच्छा झगड़ रहे हैं, सीट मिल गया है पर कौन बैठेगा, कौन पहले बैठेगा, कौन पहले, अरे सब पी सकते हैं, पहले कौन पिएगा, पहले मैं, प्रेस्टीज इश्यू है ना, पहले मैं पीऊं, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ना वो पी रहे हैं ना ये लोग तो पीने का सवाल ही नहीं देख रहे, झगड़ रहा। फिर देखे एक ऐसी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, अगर मैं वर्णन करूं तो आपका मन विचलित हो जाएगा और आप प्रवचन भूल जाएंगे, इसलिए मैं वर्णन नहीं करूंगा, और मैं भी थोड़ा विचलित हो जाऊंगा तो दो घंटे में खत्म नहीं हो, उसके लिए आप भागवतम पढ़िए। जब भगवान एक स्त्री बन के आते हैं उनसे कौन अच्छा हो सकता है, मोहिनी मूर्ति, भगवान मोहिनी अवतार ली और वो आए और गेंद खेलते हुए आया और इतना विस्तृत रूप से उनका वर्णन है, ऐसे खेलते हुए सब वो कलश साइड में ही रह गया, तो गेंद ऊपर फेंके तो ऐसा, गेंद नीचे आए तो ऐसा, ऐसा घूम रहा उनका, देखते ही रह गए, देखते देखते देखते, और वो सबको ऐसा देखती थी तो उसको लगता था मुझे देख रही है, केवल मुझे देख रही है, वो सबको ऐसे लगने लगा। तो फिर वो खेलती खेलती उधर आई, बोला क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, सिर्फ अमृत मिला है, कौन पहले पिएगा ये हमारे में थोड़ा चर्चा कर रहा है। ओ उतना ही क्या, एक काम कर सकती हूँ मैं, तुम लोगों को पिलाऊंगी, ले लो सीधा उसके हाथ में दे दी। भाई सुनो, जो जिसको पिलाएगी वो पिएंगे, हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, किसी का एनओसी नो ठीक है, आप जिसको भी पिलाओगे वही पिएगा। सचमुच? हाँ सचमुच, ठीक है लाइन में बैठो सब लोग, सब एकाएक डिसिप्लिन लाइन में बैठ गए, देवता एक और दानव लोग एक लाइन में। और वो बोली अभी मैं पिलाऊं, बोला और वो इधर देखती थी, केवल उन लोगों को ही देखती थी, असुरों की ओर आंख और देवताओं को पिला रही थी, उधर देखती और तुम एक बोले तुम लोग तो इतने धीर पुरुष हो, तुम लोग आत्मसंयमी हो, तुम लोग थोड़ा वेट करो, पहले ये कभी जब 10 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा एक बॉल के लिए झगड़े तो माँ क्या बोलती है, बेटा शाम को तेरे को दूसरा बॉल लाऊंगी, इसको दे दे छोटे को दे दे पहले ना, तू ले तू थोड़ा सहन कर, तू बड़ा है ना, ठीक है मम्मी 2 बॉल ना मेरे को देना बाल। इस तरह से मोहिनी ने कहा उनको सहनशीलता नहीं है देवताओं को, इनको एक एक बूंद पिला देती हूँ, बाकी जो बच्चा सिर्फ आपका, ठीक है आप जो ठीक समझती हो। और पिलाती गई पिलाती गई पिलाती गई, और ये लोग, और वो देखती थी वो मुझे देख रही है, उनको मोहिनी अमृत से भी ज्यादा मीठा लगने लगा। तो बोले अमृत गया तो गया, मोहिनी मुझे देख रही है वो मिलेगी मुझे। तो ऐसे करते 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 एक को थोड़ा दिमाग ठिकाना आया, वो था राहु। बोला राहु, बोला कुछ दाल में काला लग रहा है, वो तो भर भर के पिला रही है, वो खत्म होने आया। तो बोले एक काम करता हूं मैं, वो देवताओं का वेश पहन के सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया और हाथ किया उसने, और उसके हाथ उसके मुंह में सीधा, सबके मुंह में डाल रही थी, मुंह में डालते ही सूर्य और चंद्र ने बोला ए राहु ये असुर है, असुर। तो ऐसा क्या, चक्र निकाले उड़ा दिया उसको, सीधा चक्र सर उड़ा दिया, शरीर गिर गया पर सर अमर हो गया। क्यों? क्योंकि अमर चला गया ना, तो आज भी चंद्र और सूर्य के बीच में निकलता रहता है उन्होंने। तो राहु उसका केवल जो सर था वो अमृत पी लिया, लास्ट में पिला दिया, लास्ट बूंद ऐसा टप गिरा खाली रख के, तुरंत भगवान मोहिनी रूप चला गया, चतुर्भुज रूप गरुड़ के ऊपर बैठे, टाटा बाय बाय बोल के चले। और ये लोग एक दूसरे को देख रहे, ये क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे थे, अमृत का कलश उधर पड़ा है कुछ है ही नहीं खत्म। अब देवता लोग सब पी लिए तो ताकत वाकत आ गया, बोले चलो हो जाए, और फिर उनका युद्ध हुआ। वो बड़ी लंबी बात है। तो ये जब हम सुनते हैं तो काफी हम सब हंसते हैं, पर ये जो दैव और असुर का जो समुद्र मंथन है, दैवासुर संग्राम, ये संग्राम हम सबके जीवन में एक सत्य है। ये वैयक्तिक रूप से हमारे अंदर भी बहुत सारे आसुरी काम क्रोध लोभ वो जैसे असुर है जो इतने शक्तिशाली है, काम कहता है ए उधर देख, और हमारी बुद्धि कहता है कि ये यार ये ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं, ठीक है मैं देखता हूं ये खा ठीक है मुझे खाना है। दैवी शक्ति हमारे अंदर इतनी दुर्बल हो चुकी है कि आसुरिक शक्ति जब डिमांड करे तो ना बोलने की शक्ति नहीं है। जो कहते हैं हेल्पलेसली निस्सहाय भाव से हम देख रहे हैं, क्या करेंगे? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को हमने खिला खिला के इतना तगड़ा कर दिया है कि वो अगर ऑर्डर करे ना बोलने की शक्ति नहीं है हमें। और इसीलिए भगवान का आश्रय लेना जरूरी है और वो आश्रय मंथन है, मंथन अमृत। अच्छा अमृत क्यों चाहिए? अमृत से तीन लाभ मिलता है। अमृत मीठा होता है बहुत ही, जैसे हम लोग इस संसार में किसी ने अमृत पिया नहीं पर कुछ अच्छा लगा ना कोई ड्रिंक, अमृत सरखा है, मानो हम लोग हर रोज पीते सुबह शाम। अमृत जिंदगी में सुना नहीं है पर कुछ अच्छा कोई शुगर के जूस पिला दे, वाह 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 अमृत जैसा है। छाछ पी लिया तो गर्मी में अमृत जैसा है। तो एक स्वादिष्ट है अमृत, दूसरा तुरंत शक्ति प्रदान करता है, और तीसरा आयु वर्धक है। और सच देखा जाए हरि नामामृत जो है वो सच्चा अमृत है। क्यों? क्योंकि जिसको उसका मिठास चस्का लग जाए, परम दृष्टवा निवर्तते, उसके सामने कोई कहेगा मैं करोड़ रुपया दूंगा तू हरे कृष्ण जपना बंद कर दे, तो बोला तू करोड़ रुपया रख मैं ये छोड़ नहीं सकता। प्रहलाद महाराज को आपने सुना होगा कल भगवान ने क्या क्या देने के लिए तैयार नहीं, बोले नहीं मैं वणिक नहीं हूं, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, भले किसी योनि में डालो पर आपकी भक्ति नहीं चाहिए, आपका हरि नाम आपके नाम रूप गुण लीला का जो आस्वादन है वो मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो रुचि और दूसरा शक्ति, पहले कुछ आदतों को ना बोलने की शक्ति नहीं थी और सत्संग में जाने के लिए हां बोलने की शक्ति नहीं थी, दुर्बल थे। बुरे चीजों को ना बोलने की शक्ति नहीं और अच्छे आदतों में हां बोलने की शक्ति नहीं, बहुत सारा हजारों कारण दोनों के लिए, बुरे काम करने के बाद भी वो जस्टिफिकेशन और अच्छे काम न करने के लिए भी जस्टिफिकेशन। पर थोड़ा अगर हरिनाम लेने लगे तो ऐसी शक्ति मिलती है कि कितना भी शक्तिशाली दुस्संग ना हो क्यों ना, फिर भी हम कह सकते नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को। तो लोग बोलते अरे यार तू बदल गया यार जब से हरे कृष्ण करने लगा, क्या वो दिन थे हा? साथ में जाके क्या क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहां कहां जाते थे, आज कहां जा रहे? मंदिर जा रहा, किधर जा रहा? भागवत सप्ताह, कभी 7 साल में नहीं किया तू सप्ताह जा रहा है, 10-10 दिन जा रहा है, ये क्यों? पुरुषोत्तम मास, ये कौन सा भाई, ये कौन सा महीना, जनवरी से दिसंबर सुना, ये कौन सा महीना, कहां आई ये शक्ति हां कहने की और कहां आई शक्ति ना कहने की उन दुस्संगों को। ये शक्ति आती है हरिनामामृत के पान से। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम और आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये अमृत है, ये असली अमृत है। अरे देवता लोग जो पीते हैं वो अमृत पीने के बाद भी असुरों से वो डरते हैं, अघासुर से डरते थे पर ग्वाल बाल नहीं डरे क्योंकि कृष्ण का स्वरूप का अमृत का पान करने वाले, अघासुर को देख के वो डरे नहीं, मुंह में घुस गए वो, परवाह नहीं करते। क्यों? प्रहलाद को भय नहीं था हिरण्यकशिपु का, देवताओं को हिरण्यकशिपु का भय था प्रहलाद को नहीं। क्यों? क्योंकि हरिनामामृत हरि कथामृत हरि स्मरणामृत का आस्वादन रहे, ये असली अमृत है। तो शक्ति और तीसरा आयु, यज्ञत्वा अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अरे फिर तो मृत्यु ही नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, आम्ही तो जातो आमचा गावा आमचा राम राम घ्याव, तुम्ही इकडे ठेवा आम्ही मी जातो, तू लोग रहो मैं जा रहा हूं वहां। तो आयु स्वाद और शक्ति तीनों प्रदान करने वाला हरिनामामृत है। पर ये हरिनामृत जब आप शुरू करोगे सबसे पहले विष निकलेगा, याद रखो, आप याद रखिए हमेशा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जो विचार कभी नहीं आया उसी समय आएगा। 20 साल पहले किसी ने 20 रुपया लिया था उसी समय याद आएगा, अभी तक उसने दिया नहीं। कुछ सब प्रकार के उसी समय। अच्छा आप बोलेंगे ऐसा क्यों, एक भक्त ने पूछा ऐसा क्यों होता है। बोले करोड़ों साल से अगर तुमने कमरे गंदा कमरा है, खिड़की नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, ऐसे ही रखा हुआ है, और मेन रोड के पास है, ऊपर का विंडो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर सब खोला हुआ है, इतना मोटा थिक लेयर ऑफ डस्ट पूरा धूल गया। दरवाजा खोलते तो पूरा शुद्ध दिखता है, पर जमीन के ऊपर इतना मोटा गंदगी करोड़ों 10 साल से बैठा हुआ है, और अभी आपने झाड़ू लिया और एक झाड़ू मारा, क्या होता है वो कमरा पहले से ज्यादा गंदगी, खांसने लगते हो, उल्टी जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि सारा धूल जो बैठा हुआ था उठ के नजर आ रहा है, ये नहीं कि था नहीं, था पर चिपक गया था, अभी वो ऊपर उठ के नजर आ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर रियलाइजिंग हाउ मच ऑफ कंटेमिनेशन इज देयर विद इन योर माइंड एंड हार्ट। क्यों? क्योंकि आप झाड़ू मार रहे हो, मंथन कर रहे हो। एक ग्लास में थोड़ा धूल डाल के छोड़ दो, धूल नीचे चला जाता है, एक चम्मच डाल के उसको ऐसा घुमाओ तो क्या होता है, पूरा धूल ऊपर उठ के और गंदा लगने लगता है। ये पहला इंस्टॉलमेंट है। जब हम हरिनाम लेना कर शुरू करते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट गंदगी ऊपर आएगी, और वो देख के आदमी डर जाता है, झाड़ू फेंक के भाग जाता है, फिर उसे दरवाजा लॉक करके छोड़ो भाई नहीं करना है कुछ नहीं। इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ करो, निश्चय विश्वास रखो, एक समय आएगा जब कितना भी झाड़ू मारो धूल नहीं रहेगा, क्योंकि धूल सब धीरे धीरे चला जाएगा। और धैर्य धीरज रखो, धीरज मत खो। वो कब होगा जब ऐसे श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर हम जप करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब होगा। क्योंकि संघ में लोग बोलते हैं तेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा तेरे को भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को लगा मेरे सर पे आकाश गिरा है। मेरी बड़ी बहन जब पहली बार गर्भवती हुई, उसको उल्टी हो गया, पैर फूल गया, ये हो गया, मेरी माँ के पास ऐसा ऐसा हुआ, फोन करती थी हमेशा, तो मेरी माँ बोली अभी ये हुआ ना कल ये भी होगा। अच्छा, बोला हाँ ऐसा भी होता है, तो फिर उसको बहुत अच्छा लगा, ओ कोई नई बात नहीं। तो एक अनुभवी व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं जो कई सालों से कर रहे हो, बोलते ऐसा होगा कल ऐसा भी होने वाला है। उत्साह निश्चय धैर्यात, तो पहले पहले हालाहल विष आएगा। वैष्णवों का आश्रय लो, भाग के जाओ वैष्णव के पास, प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा, कुछ करोगे, चिंता मत करो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो उस समस्या को ले लेंगे और हमको हल दे देंगे। ये पहला इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट कर गए, दूसरा और भी ज्यादा खतरा। प्रभु जी जब से मैंने जप किया ना, प्रमोशन मिल गया, पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी, बच्चे प्रहलाद और ध्रुव जैसे व्यवहार करने लगे, अभी मेरी कोई समस्या नहीं है, सब समस्या दूर हो गया, इसीलिए मैंने जप माला टांग दिया प्रभु जी, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था मिल गया, अभी जब दूसरी समस्या आएगी तो उठाऊंगा माला, अभी सेफ डिपॉजिट में लाख डाल के रखा हूं। नहीं, इससे भ्रमित मत होना, समस्याओं से विचलित मत होना और प्रलोभन से भ्रमित मत होना। कहा था ये सब आएंगे, अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे, अच्छे अच्छे चीज होने लगेंगे, ये भी माया का गाजर लटकाने का तरीका है। आ बेटा तेरे को यही चाहिए ना, तू माला छोड़ बस ये ले, तो छोड़ देगा और इधर आ जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा था जब तक अमृत नहीं आए तब तक वो हाँ में हाँ मिलाते रहना, बोले नहीं आजाने करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अपना चालू रखो, बस मंथन चालू रखो, क्योंकि जब तक मंथन चालू रहेगा तभी अमृत आएगा, उसको मत छोड़ो। समस्याएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे, बाधाएं आएंगी, उससे भटक मत जाना। और इस तरह से हम देखते हैं अमृत आया और इस तरह से अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात, इस दुनिया में जो देखने को मिलता है ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है सबके जीवन में, ये कोई नई बात नहीं है, करोड़ों साल पहले हुई घटना है, आज भी उतना ही लागू है। वैयक्तिक रूप से हमारे जीवन में आसुरिक शक्ति दैवी शक्ति दो प्रकार के, इस समाज में भी आसुरिक शक्ति है दैवी शक्ति है, इस देश में भी इस संसार में भी आसुरिक शक्ति है दैवी शक्ति है। कभी कभी आसुरिक शक्ति की जीत हो जाती है, भटकते घूमना पड़ता है देवताओं को अपने घर बार छोड़ के, और फिर वो आश्रय लेते हैं भगवान का। क्यों? क्योंकि जब सब ठीक ठाक रहता है तो हम ढीले पड़ जाते हैं अपने धार्मिक कार्यों में, और इसलिए हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जब समस्याएं आती है तो सब एकत्र होती है, अरे बाप रे जपा करो, जोर से करो, ठीक से करो। दुर्भाग्यवश वो ही समस्या हमको साथ में लाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस समस्या की जरूरत नहीं है, अनुभव करके ही सीखते हैं हम लोग। तो इस तरह से आसुरिक शक्ति है दैवी शक्ति है, सिर्फ हमें उन शक्तियों का लाभ लेके आश्रय लेके आगे बढ़ना है, और वो बढ़ाएंगे तो आसुरिक शक्ति कम होते जाएगी। दूसरी बात ये कि बाहरी रूप से देवता और असुर एक ही जगह पे थे समुद्र मंथन के लिए, एक ही कार्य कर रहे थे, उनका उद्देश्य भी एक ही था अमृत प्राप्त करना, सब चीज एक ही था, पर दो अलग अलग परिणाम हुआ। क्यों? क्योंकि एक कर रहे थे भगवान की आज्ञा थी इसीलिए वो कर रहे थे, और दूसरा प्रलोभन से अहंकार से ईर्ष्या से इससे कर रहे थे कि करेंगे और इसके बाद हम लोग इसका भोग करेंगे। इस तरह से अर्जुन भी रथ पे सवार है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तीर चला रहा है लाखों को मार रहा है, दुर्योधन भी रथ पे सवार है तीर चला रहा है लाखों को मार रहा है, दोनों बाहरी रूप से काम एक ही कर रहे हैं, एक अहंकार से प्रेरित होकर ईर्ष्या से प्रेरित होकर लोभ से प्रेरित होकर लड़ रहा है, और अर्जुन केवल भगवान की आज्ञा के अनुसार लड़ रहा है। तो कोई गृहस्थ है कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ तो पूरी दुनिया गृहस्थ है, 99% तो गृहस्थ है, वो भी अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, आप भी अपनी घर गृहस्थी चला रहे हो, पर अंतर किस लिए चला रहे हो, किसके उद्देश्य से, किसकी आज्ञा के अनुसार, किसकी प्रसन्नता के लिए, ये प्रश्न पूछना जरूरी है। अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मेरी पत्नी ये मेरे बच्चे मैं इसको भोगना चाहता हूं, ये आसुरिक गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ नहीं वो ग्रह में दिए, पर अगर भगवान की आज्ञा है एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीना है, जवाबदारी लेना है, बच्चों को जितना यथाशक्ति हमको एक अच्छा संस्कार देना है, हमारा कर्तव्य करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस कर्तव्य बुद्धि से अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अमृत का आस्वादन करेंगे। निश्चित रूप से भले ऐसा लगेगा कि हम हार गए यार, न अमृत मिला न संसार का भोग मिला, न घर के न घाट के, धोबी का गधा बन गया मैं। हाँ, ये हरे कृष्ण वालों के कहने के कारण मैंने चाय पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, नशा जुआ सब छोड़ दिया, न अमृत मिला वो भी ले गए वो लोग, और ये भी नहीं मिला, सिर्फ घिसते घिसते बैठ गया मैं मंथन करते करते, अंतिम क्षण तक परीक्षा करके एक्साइटमेंट पूरा क्रीम ऐसा ले जाके बाद में अमृत मिलता है, बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, भगवान देखते सचमुच में तुझे अमृत चाहिए, परीक्षा होगा। पर एक चीज अंतर था, देवताओं में विश्वास था, भगवान ने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार हम कर रहे हैं, अब कब मिलेगा अमृत कैसा मिलेगा, अरे मिलके वो लोग ले गए, जो भी हो उन्होंने जो बोला है उसके विश्वास करते हुए हम कर रहे हैं कार्य। ये सीखने वाली बात है समुद्र मंथन लीला से। हो अभी 5 मिनट में 2 कथा करना है, ये कथा कभी कभी 5 दिन में मैं करता हूं वामन देव और बलि महाराज का, पर मैंने प्रण लेके बैठा हूं कि ये खत्म करके ही उठूंगा। अभी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी मैं पूरा एक्सप्रेस ट्रेन जैसा भागूंगा। एक समय की बात है तो फिर देवताओं का और असुरों का लड़ाई हुआ, बलि महाराज को देवताओं ने मार डाला, पर ऐसी संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य उनके गुरु के पास कि उन्होंने उस ऐसे एक कुंड बनाया संजीवनी का, उसके उनके पास एक विद्या थी संजीवनी विद्या, उस कुंड में उसको डाल दिया तो जीवित हो गए। जिसका भी शरीर ठीक ठाक था उसको डाला, जीवित हो गए, असुर भी हो गए। तो बलि महाराज शुक्राचार्य के ऋणी हो गए। शुक्राचार्य ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुझे संपूर्ण विश्व को वापस दिलाऊंगा, मैं तेरे द्वारा। और इतने निष्ठा थे बलि महाराज का शुक्राचार्य के प्रति, ऐसी गुरु निष्ठा थी। शुक्राचार्य भी अच्छे ब्राह्मण थे, पर थोड़ा जैसा संग वैसा रंग हो जाता है असुरों का साथ साथ रह रह के। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तुझे एक विश्वजीत यज्ञ कराता हूं तेरे से, और अगर वो यज्ञ किया तो पूरे विश्व को तू जीत सकता है, तीनों लोकों को जीत सकता है। और यज्ञ कराए, और उस यज्ञ में से एक रथ आया, एक कवच आया, एक क्या बोलते हैं हाँ उसमें से ऐसे मतलब बाण हमेशा निकलते रहे, खत्म ही नहीं होता, तर्कस, हाँ वो, और उसके बाण सब आ गए, एक हार आया, सब कुछ, और उनको पहना दिए। शंख एक आया, बोले अब अगर ये तू पहन के जाएगा, एक तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उनकी कृपा, और तूने सारे नियमों का शास्त्र का पालन किया है, अब तेरे में ऐसा तेज और शक्ति है कि कोई शक्ति इस दुनिया की तुझे हरा नहीं सकती। और जो बलि महाराज बैठे उस रथ पे, सीधा इंद्र की ओर गए। इंद्र ने जब देखा जो शंख बजा बलि महाराज का, इंद्र देख के ही डर गए, बोले ऐसा तेजोमय शरीर, दैदीप्यमान शरीर उनका, और ऐसा चमक और ऐसा तेज के साथ, इतने उत्साह के साथ आ रहे। भागते हुए बृहस्पति अपने गुरु के पास गए और बृहस्पति से पूछे, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा शक्तिशाली बलि कभी ऐसा दिखा नहीं मुझे आज तक। बोले नहीं, अभी उसको खास कृपा मिली है, उसने अच्छे तरह से शास्त्रों का, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। बोले अब उसका अच्छा दिन चल रहा है, अब तू यहां खड़ा रहेगा तो टिक नहीं पाएगा, चुपचाप यहां से भागो तुम। देखो ये संसार में कैसा कायापलट होता है, एक अभी पूरे संसार का राज्य, और दूसरे दिन फिर से वापस सड़क, छिप छिप के, कोई पक्षी बन गया, कोई ये बन गया, रूप बदल कर सब जाके छिप छिप कर स्वर्ग लोक से बाहर निकल गए। ऐसी परिस्थिति भी आती है, देवताओं की आती है, फिर हमारा क्या कहना, अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं। तो बेचारे भाग गए सबको, और ऐसे कई साल गए। उनकी माता अतिथि अदिति, कौन सी माता है जो उसको अच्छा लगेगा, बच्चे तरस रहे हैं बेचारे, अपनी पदवी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब भटक रहे हैं, बहुत दुखी हो गए। तो एक दिन कश्यप मुनि ध्यान से बाहर आए, आश्रम में आए, और बोले अरे क्या लग रहा है, थोड़ा ऐसा लगता है बड़ी दुखी लग रही है, वो बात क्या है। बोले आपको क्या जी, आप तो मग्न में रहते ध्यान में, इतने सालों से कुछ पता किया है क्या हमारे बच्चों को क्या हुआ। बड़े प्रेम से बोले, मैं थोड़ा फिल्मी डायलॉग बता। बोले प्रभु ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आश्रम में सब कुछ ठीक है, पर मैं तृप्त नहीं हूँ। बोले क्यों, क्योंकि मेरे हमारे बच्चे ऐसे भटक रहे हैं सड़क सड़क पे, इनके लिए आप कुछ कीजिए। बोले क्या हो गया, और फिर कहते हैं बहुत सुंदर से कश्यप मुनि कहते हैं देव माता अदिति को, बोले ये द्वंद्वों का संस्कार है, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे, छोड़ दो, इसमें क्यों पड़ती हो ये सब चीज़ों में, हरि नाम लो, जीवन सफल करो अपना, अपने अपने कर्म के अनुसार सब हो रहा है। बोले वो मैं नहीं समझती ये बात, मैं जब तक उनको अपने मूल रूप में स्थित नहीं देखती तब मैं संतुष्ट नहीं रहूंगी। जैसे ध्रुव महाराज ने भी कहा, अब जो बोल रहे हो गलत है पर बढ़त नहीं। बोले जमता नहीं मुझे, बैठता नहीं मेरे हृदय में, प्रेम है माता का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हे देवी मैं 12 दिनों का तुम्हें एक पयोव्रत नाम का एक व्रत बताता हूं, केवल उसमें दूध पान करना और इस तरह पूरा नियम बताया, अगर ये पालन करोगी तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते और तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। उसने किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए 12 दिन के अंदर और भगवान को बताई, वो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बोले बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। और कुछ दिन बाद कश्यप मुनि के हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और तत्पश्चात वो माता अदिति के हृदय में और वहां से उनके गर्भ में प्रवेश किए और थोड़े ही दिनों में वो जन्म दी उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई के रूप में वामन देव जी का जन्म हुआ। बहुत सुंदर स्वरूप, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पीत वर्ण धारण किए आ गए और याद दिलाए कि तुम्हारी इच्छा थी वह प्रकट हुआ हूं, और फिर उन्हीं के सामने एक बौने का रूप ले लिया। वामन, वामन का मतलब बौना, बस 3 फुट होंगे, बस छोटे से, बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत ही सुंदर स्वरूप, कोई भी देखे तो एकदम गले लगाने का दिल करे ऐसा छोटा स्वरूप। तो छतरी लिए हुए एक हाथ में और दूसरे में कमंडलू लिए हुए और मृग चर्म पहने हुए, फिर सब देवतागण आए और उनको अलग अलग अपने वस्त्र और इत्यादि दिए, भिक्षा दिए, और तत्पश्चात वामन देव गए इनके यहाँ, कहाँ, बलि महाराज के यज्ञ, भृगुकच्छ, भरूच है ना, भरूच वो स्थान था जहाँ बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसको कहते भृगुकच्छ, अभी वो भरूच हो गया, शेंगदाना मिलता है वहां अभी बस। हमारे द्वारकाधीश प्रभु के पिताजी हमेशा खिलाते थे, भरूच गया तो वहां का है मोटा शेंगदाना, यज्ञ का फल लगता है। तो भृगुकच्छ में वो चल रहा था यज्ञ और यहां गए, और जैसे वो प्रवेश किए इतना तेजोमय शरीर देखकर सबके सब ब्राह्मण खड़े हो गए। बलि महाराज ने देखा, मन ही मन उनको लगा प्रणाम करना है, पर सब बैठे हुए थे तो मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, बस उस प्रणाम को भगवान ने स्वीकार किया। बलि महाराज एक उन्होंने प्रण लिया था कि मैं ब्राह्मणों को संतुष्ट करूंगा, तो प्रणाम किया मन ही मन और बोले आइए बैठाइए उनको, अच्छी तरह से उनकी सेवा की और बोले निश्चित रूप से आप कोई इच्छा लेके यहां आए, पूछिए आपको क्या चाहिए। देखिए जो जन्माष्टमी डोनेशन के लिए जाते हैं वामन देव से सीखिए कैसा बातचीत करना है। कितना खुश किए बलि महाराज को, अरे आपके पीढ़ी लोगों ने क्या क्या सेवा किया, कैसे कैसे लोग हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे वीर जब गए तो किसी से देखते नहीं थे, रणभूमि में ऐसा लड़ते थे, इस तरह से पूरे पूर्वजों का उनके महान कर्मों का गुणगान किए और बोले आपके इसमें जो वचन दिया वो पूरा निभाता है, इस तरह से उनका गुणगान किए, पहले थोड़ा बढ़ाया, उपसाया प्रेम से अच्छी तरह से, बोले आप देने के लिए तैयार हो, मैं जो भी मांगूंगा निश्चय रूप से, मैं वचन दिया हूं। बोले ठीक है मैं कुछ नहीं चाहता, 3 कदम वो भी मेरे, आपके नहीं मेरे, एक बौने का कितना होता है कदम, एक छोटा बच्चा उसका पैर देखिए कितना होता है, 3 कदम। बलि महाराज ठहाका मारकर हंसने लगे, बोले मैं सोचा था तू देखने में छोटा है, तेरा दिमाग भी बहुत छोटा है। बोले किससे क्या मांगना, करोड़पति के पास जाके बोले मुझे 5 पैसा और 2 चपाती मिलेगा क्या, अरे इज्जत का मेरा इज्जत को सोचो, कौन हूं मैं, अरे एक लोक मांगो, चारो सोने का कुछ तो मांगो ना, 3 कदम और भी 13। बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते, ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि हे बलि आज जिस स्थिति में जो है उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं है तो 3 लोगों की इंद्र तृप्ति की वस्तु भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता, जिसकी इंद्रियां नियम में है, संयम में है, जिसका मन संयम में है वही व्यक्ति संतुष्ट होता है। बहुत बड़ी बात कही, सीताराम 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 कहिए, जाहिरे विधि राखे राम ताहिरे विधि रहिए, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वासदे, धन्यवाद निर्विवाद राम रस पीजिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रही। संतुष्टि ये मन का शुद्ध होने का लक्षण है। असंतुष्ट मन कभी, अशुद्ध मन कभी संतुष्ट नहीं होता अपनी स्थिति से। तो बोले मेरे तीन कदम मेरे लिए काफी है। हां बोल दिए, हां बोल दिए, तब तक शुक्राचार्य वहां से आगे बोले, ए बलि मूर्ख क्या कह रहा है तू, ये कौन है तुझे नहीं मालूम, ये वामन नहीं है, ये धोखाबाज है, ये विष्णु है, ये विष्णु है। भला भगवान बोलते हैं गीता में, छलयम छलयाताम अस्मि, धोखे देने वालों का मैं सबसे बड़ा धोखेबाज। हाँ, तो पहचान गए शुक्राचार्य भी कोई कम नहीं थे, वो पहचान गए, बोले ये बलि ये विष्णु है, ये भीख मांगकर तीन कदम में सब कुछ नाप लेगा, तू कंगाल हो जाएगा, कुछ देने के लिए कुछ नहीं रहेगा तुझे, और तेरे वचन तू बद्ध नहीं हो पाएगा, तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा। आप धर्म संकट में पड़ गए बलि महाराज, आज तक उन्होंने जो वचन दिया कभी पीछे नहीं गए, और अभी गुरु जी का आज्ञा, एक तो वचन ब्राह्मण को वचन, दूसरा गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ मानी जाती है। पर बलि महाराज ने यहां सबसे महत्वपूर्ण काम किए बलि महाराज, जिसके कारण वो एक महाजन बन गए। महाजनो ये नगत सपंथा, महाजन के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो हम भी महाजन बनेंगे। बलि महाराज सोचने लगे, अगर मेरे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है कि ये सामने खड़ा हुआ व्यक्ति विष्णु है, साक्षात भगवान है, अब वो मुझसे भीख मांगने आए, क्या मेरा अहोभाग्य है। और वैसे भी धन यश, धन और शरीर ये तो सब नष्ट होने वाला ही है, पर यश जो व्यक्ति का है वो हमेशा टिकता है। उन्होंने बहुत ही पिछले शास्त्रों का, गुरु साधु शास्त्र के वचनों का स्मरण किया और बोले नहीं, मैं वचन बद्ध रहूंगा। और जैसे दशरथ भरत ने अपनी मां को त्याग दिया प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, इस तरह से बलि महाराज ने उस आज्ञा को, गुरु की आज्ञा को, हालांकि वो कृतज्ञ थे गुरु के प्रति, क्योंकि ये आज्ञा सदगुरु के आज्ञा के विरुद्ध था। गुरु हमें आज्ञा देना चाहिए भगवान की शरण जाओ, माम एकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान प्रति, पर ये कह रहे कि मत शरण जाओ स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, कि मेरा चेला करोड़ वाला है अभी रोड पे आ जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा। बोले नहीं चाहिए। उन्होंने अपने गुरु के वचनों का, तथाकथित गुरु के, शुक्र आचार्य मतलब पैदा हुआ गुरु, योग्य गुरु नहीं, सिर्फ गुरु के गोस्वामी के परिवार में गोस्वामी, पर नाम के गोस्वामी, काम के नहीं, ऐसे नहीं, तो उन्होंने नकार दिया और स्वीकार किए। और निश्चित रूप से बलि वामन देव ने दो ही कदम में संपूर्ण विश्व को नाप लिया, तीसरा कदम रखने का स्थान नहीं। बलि महाराज के, बलि महाराज समझ गए, पर गदगद हो गए, वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, उनके हृदय में लेश भी ये नहीं था, अरे रे क्या किया मैंने, दिव्य आनंद के चलो मैं अपना वचन रख पाया, पर फिर भी तीसरा कदम कहाँ रखना है। तब उन्होंने कहा कि देने वाले से, दान से दानी व्यक्ति का वो अभी भी मेरा ये है कि मैं दे रहा हूं, अब मैं अपना सर रखता हूं, और उसके ऊपर भगवान ने अपना तीसरा कदम रखा, पर कहा कि तुम झूठे निकले, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के आदेशानुसार सब कुछ छीन लिया तुम्हारा मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ तू खो जाएगा, तू नरक में जाएगा, मैं तुझे सुतल लोक में भेज रहा हूं। और सुतल लोक नीचे का लोक है, पर वो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, स्वर्ग लोक से भी ज्यादा, क्योंकि विश्वकर्मा ने निर्माण किया हो, और वहां भगवान खुद भर भर के उसको आशीर्वाद दिए, खुद जाके द्वारपाल बन के खड़े हैं महाराज बलि के महल में आज भी। इस तरह से भगवान ने ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्योंकि संपूर्ण रूप से शरण गया बलि उसके, वो उनको भी खुश, बलि महाराज भी खुश, और इंद्र को वापस वो पदवी दिला दिए। और इस तरह से ये लीला कहा। तत्पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, एक बलि महाराज के साथ प्रहलाद महाराज भी चले गए सुतल लोक में, क्योंकि वह असुरों के राजा थे, उनके साथ वो चले गए। भगवान ने इंद्र को अदिति माता के वचन के अनुसार वो सौंप दिया। अब शुक्राचार्य से पूछे, बलि महाराज के क्या दोष है बताओ, तुमने उसे शाप दिया ना, बताओ उसके क्या दोष है। तब शुक्राचार्य जी सर झुका के प्रणाम किए, बोले प्रभु यज्ञ का कोई भी यज्ञ का उद्देश्य है आपको प्रसन्न करना। मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम तव अनुकीर्तनम यह। बोले मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, इस संस्कलियुग में मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है, यज्ञ के सामग्री कुछ अशुद्ध है, समय कुछ नहीं, मतलब मंत्रतः तंत्रतः छिद्र, उसमें कुछ छिद्र है, देश ठीक नहीं है, काल नहीं है, योग्य नहीं है, ब्राह्मण लोग योग्य नहीं है। कभी कोई कोई आता है, पी के आता है, बोलता है जल्दी करके जाना मेरे संस्कार के लिए, शाब्द क्रिया के लिए। हमारे घर में एक बार बैंगलोर में मेरी भाभी ने किसी को बुलाया, पूरा पी के आया था, टाइट होके हो, बोला कौन सा यज्ञ होना, हाँ जल्दी आओ, डांटने लगाओ सबको। तो मेरा भाई उसको थप्पड़ मारने वाला था, मेरी माँ मेरी भाई भाभी बोले नहीं मत करो, थोड़ा श्रद्धा उनको ज्यादा है, पर ये बोला ऐसा कैसे, ये ब्राह्मण है क्या। मंत्र था तंत्र था छिद्र, में कलयुग में सब छिद्र है। देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम तव अनुकीर्तनम, जहां आपका कीर्तन होता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस तरह से इस सुंदर लीला को शुक्राचार्य के मुख से ही निकालकर भगवान समाप्त करते हैं और मानते हैं शुक्राचार्य। बोले जहां आपका हरिनाम कीर्तन हुआ है और उस कीर्तन से आप संतुष्ट हुए, भोक्तारण्य तपसा सर्व, आप अगर संतुष्ट हो गए तो फिर और क्या, वो सफल है, वो यज्ञ सफल है, भले उसमें कितने भी छिद्र हो, बट भगवान संतुष्ट हो गए तो फिर हो गया काम। अगर भगवान संतुष्ट नहीं हुए, सब ठीक ठाक रहा, क्या फायदा। और अंत में लास्ट अध्याय, 24वां अध्याय, 2 मिनट में समाप्त करता हूं। भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उनमें से एक अवतार था मत्स्य अवतार। 3 अवतार का कथा मैंने बताया, हाँ 2 घंटे में, वामन का हो गया, अभी मत्स्य अवतार, वहां अजित अवतार हुआ, कूर्म अवतार, कितने अवतार हो गए, समुद्र मंथन में 8 अवतार हो गए भगवान के। तो 10 अवतार का कथा मैंने 2 घंटे बताया कलयुग में, तो चलता है। तो एक बार हयग्रीव नाम का एक राक्षस, पिछले कल्प में ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हयग्रीव नाम का एक राक्षस, ब्रह्मा जी का सॉफ्टवेयर थेफ्ट, ब्रह्मा जी के दिमाग से वेद निकाल लिया उसने। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में था और उसने पेनड्राइव डाल के ले लिया, नहीं, सॉफ्टवेयर वहीं से वहीं निकाल लिया। ब्रह्मा जी बोले अरे वेदों का ज्ञान किधर गया, ये तो अभी तो स्थूल रूप से सॉफ्टवेयर स्टीलिंग होता है, सूक्ष्म रूप से हो गया था उधर, सृष्टि की शुरुआत ही में। और तब भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए और फिर से वापस वेदों को लाकर प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम लेके आए और वापस केशव धृत मीन शरीरा जय जगदीश हरे। वो मत्स्य अवतार पहले हुआ था, पर ये स्वयंभू मनवंतर में हुआ। फिर 6ठे मनवंतर चक्षुषा मनवंतर, अभी जो है वैवस्व 7वां चल रहा है, चक्षुषा मनवंतर में और एक बार सत्यव्रत मुनि भगवान की कृपा के लिए उन्होंने प्रण लिया था कि मैं केवल पानी पी के मैं यज्ञ करूंगा, मतलब पूजा करूंगा। कई समय तक दीर्घ काल तक केवल पानी पी के चला रहे थे और एक दिन जब वो नदी में पानी लेने के लिए ऐसा हथेली में लिए तो उसमें छोटा सा एक मछली आ गया और वो नीचे डालने वाले थे तो मछली कहने लगा अरे मुझे आश्रय दो, हे सत्यव्रत मुझे आश्रय दो, आश्रय दो। बोले बोलता मछली, बोले कहा ठीक है मैं तुझे आश्रय देता हूं, तो कमंडलू में रख दिए। देखते देखते वो कमंडलू छोट पड़ गया, एकदम छोटा पड़ गया, जैसा बच्चा समर वेकेशन के बाद उसका 7वें कक्ष का चड्डी जो है बड़ा छोटा हो जाता है, 8वें में आ गया ना, अभी 8वीं में बढ़ने का उम्र है, बोला ये छोटा हो गया, ये कमंडलू छोटा हो गया। तो उन्होंने एक अच्छा बड़ा सा एक इसमें जो ये था कुंड जैसा महल में उसमें डाल दिया। देखते देखते कुंड भी छोटा हो गया। अरे राजन ये कुंड छोटा हो गया, कुंड छोटा हो गया। बोले कुएं में डाला। अरे कुआं छोटा हो गया, कुआं छोटा हो गया। तालाब में डाला। अरे तालाब छोटा हो गया, नदी में डाला। नदी में तो समुद्र में डाला, समुद्र भी छोटा होने लग गया। तो बोला प्रभु मैं अपने भ्रम में था कि मैं आपको आश्रय दे सकता हूं, अब मैं आपकी शरण जाता हूं, आप मुझे आश्रय दो। मैं क्या आश्रय दूं आपको। और तब मत्स्य अवतार कहते हैं कि हे राजन मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, 7 दिनों में महाप्रलय होने वाला है, संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा प्रलय में, और उस समय मैं चाहता हूं कि तुम सप्त ऋषियों को लेकर, इन लोगों को उनको बताए कौन कौन, इन सबको लेकर तुम तैयार रहना। और एक नाव आएगा उस प्रलय के पानी में, नाव आएगा उसमें आप सब प्रवेश करना और उस नाव के रस्सी को इस मत्स्य अवतार का जो सिंह है उसमें डाल देना और मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। लोग कहते हैं आपको मालूम है मनोली, उत्तर भारत में मनोली है, क्या बोलते हैं शिमला के पास मनाली, ये मनाली नाम कैसा आया मालूम, वहां जाएंगे वहां बड़ा बोर्ड लिखा है यहां मनु का जो नाव है वहां लैंड किया, इसलिए मनाली बोलते हैं उसको, मनु आलय। तो प्रलय के दौरान वो वहां बैठे और वहां से प्रलय में सब सब धीरे धीरे कई दीर्घ काल तक वो प्रलय का पानी रहा, फिर धीरे 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 जब नीचे आया तो वहां फिर से, तो सत्यव्रत मुनि बाद में अगले मनमंत्र में वही सत्यव्रत मुनि अभी के जो मनु है वैवस्वत मनु, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे, अभी जो मनु वैवस्वत मनु है ये वही चक्षुषा मनवंतर के सत्यव्रत मुनि है जो भी मनु बने हैं। और इस तरह से ये 2 अवतार बहुत सुंदर से हुए और भगवान ने इस तरह से 8वें स्कंद में इस अवतारों से यहाँ सुखदेव गोस्वामी इस कथा को समाप्त करते हैं और हम भी समाप्त करेंगे। कल 9वां अध्याय 10वां अध्याय सब सुन लीजिएगा। बोलो कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदी।